हेलो,
आज के इस टेक्निकल सेशन किंडलिंग सेल्फ मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन के हमारे स्पीकर प्रोफेसर ईवी स्वामीनाथन हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम उनका स्वागत करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि वे स्टेज पर आएं और हम करतल ध्वनि से उनका सम्मान करेंगे। हमारे बीच में प्रदीप भाई भी मौजूद हैं। प्रदीप भाई हम सभी के लिए एक ईश्वरीय गीत सुनाएंगे और उस गीत पर हम सभी मेडिटेशन करेंगे। प्रोफेसर स्वामीनाथन का स्वागत हम गुलदस्ते के द्वारा कर रहे हैं, गुलदस्ते एवं बैजेस के द्वारा।
मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। मधुबन खुशबू
बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप भाई जी। आज के हमारे सेशन के वक्ता प्रोफेसर ईवी स्वामीनाथन, उनका संक्षिप्त परिचय मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रोफेसर स्वामीनाथन एक ट्रेनर हैं, टीचर हैं, काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड में आपने बी मैकेनिकल किया है कालीकट यूनिवर्सिटी से। आपने साइको न्यूरोबिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है तमिलनाडु यूनिवर्सिटी से। आपने डेल्टा हीलिंग में डिप्लोमा किया है तमिलनाडु यूनिवर्सिटी से। आपने मास्टर्स इन सेल्फ मैनेजमेंट एंड क्राइसिस मैनेजमेंट किया है अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से। आपने कई तरह के प्रोग्राम्स जो हैं विभिन्न कॉरपोरेट्स और अन्य संस्थाओं में किए हैं। जो मुख्य विषय आप जिन पर आप वक्तव्य देते हैं वो है इमोशनल इंजीनियरिंग, होलिस्टिक सेफ्टी, मेमोरी मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ लीडरशिप, जर्नी विद हार्मनी, डाइल्यूटिंग स्ट्रेस आदि आदि। आपने कई बड़ी कंपनियों में जैसे कि ICICI प्रोडेंशियल, रिलायंस एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंफोसिस, कई हॉस्पिटल्स में भी आपने प्रोग्राम किए हैं जैसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, हिंदुजा हॉस्पिटल, नानावती हॉस्पिटल, वर्कहॉर्डेड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कई मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेज जैसे कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, कई पुलिस फोर्सेज जैसे कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, महाराष्ट्र पुलिस, कर्नाटका पुलिस इत्यादि में आपने अपने लेक्चर से लोगों को लाभान्वित किया है। आपको कई प्रकार के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है जिसमें कि मुख्य है सनराइज पीस अवार्ड बाय सनराइज पीस मिशन। आपको रोटरी कप के द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस एंड नेशन बिल्डर अवार्ड दिया गया है। आपको एक यूनिक डिस्टिंक्शन भी प्राप्त है कि आपने जो दुनिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट सबसे ऊंचा बैटलफील्ड जो है सियाचिन बैटल स्कूल जो कि इंडो पाक चाइना बॉर्डर पर स्थित है वहां पर भी आपने जवानों के लिए ट्रेनिंग का प्रोग्राम किया हुआ है। आप में से कई शायद उन्हें जानते भी होंगे, आपने उन्हें कई टीवी चैनल्स पर देखा होगा जैसे कि जी जागरण, आस्था, संस्कार, पीस ऑफ माइंड टेलीविजन पर। प्रोफेसर स्वामीनाथन के लिए दो शब्द मैं जरूर बोलना चाहूंगा, अंधेरे को भगाने के लिए दुनिया में मिलते हैं कई चिराग, अंधेरे को भगाने के लिए दुनिया में मिलते हैं कई चिराग, पर कुछ होते हैं ऐसे चिराग, कुछ होते हैं ऐसे चिराग जिन पर सूरज भी करता है नाज, सूरज भी करता है नाज। तो ऐसे ही एक चिराग हैं हमारे प्रोफेसर स्वामीनाथन जिनको जिन पर ऊपर वाला भी करता है नाज। तो अभी सेशन में उनको हैंडओवर करता हूं प्रोफेसर स्वामीनाथन।
ओम शांति, सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग में ईश्वरीय निमंत्रण को स्वीकार करके जो पिछले 3 दिनों से इस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, विशेष आज का जो सत्र है परमात्मा की तरफ से, शिव बाबा की तरफ से, आप सभी बहुत मीठे मीठे भाइयों और बहनों का मैं बहुत दिल से स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। I extend a very very hearty and a cordial warm welcome and invitation to all of you to today's session. कहते हैं यूं ही नहीं मिलती हर राही को अपनी मंजिल, यूं ही नहीं मिलती हर राही को अपनी मंजिल, एक जुनून का दिल में हौसला बढ़ाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसी बनाती हो आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसी बनाती हो अपना आशियाना, तो उसने कहा भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका लगाना पड़ता है बार बार, तिनका तिनका लगाना पड़ता है बार बार। आज का जो सेशन है किंडलिंग सेल्फ मोटिवेशन, और दोस्तों आज का जो सेशन है मैं इसको 5 फेसेस में कवर करूंगा। द 5 सब पार्ट्स ऑफ टुडेज टॉपिक वुड बी सेल्फ मोटिवेशन के अंतर्गत, सबसे पहला है लक्ष्य, दूसरा है लक्षण, तीसरा है प्रशिक्षण, चौथा है निरीक्षण और पांचवा है प्रेरणा स्रोत। लक्ष्य, लक्षण, प्रशिक्षण, निरीक्षण और प्रेरणा स्रोत। इफ यू वॉन्ट टू ट्रांसलेट दैट इन इंग्लिश, फॉर सेल्फ मोटिवेशन दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ अ सर्किट डायग्राम, एक प्रोसेस। नंबर 1 इज विजन, नंबर 2 इज मिशन, नंबर 3 इज ट्रेनिंग, नंबर 4 इज एप्लीकेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन, एंड नंबर 5th फेज ऑफ मोटिवेशन इज व्हेन यू योरसेल्फ बिकम अ रोल मॉडल फॉर अदर्स। एक एक को हम कवर करेंगे। सबसे पहला क्या था? लक्ष्य। अक्सर करके जब मैं अपने स्टूडेंट से मिलता हूं तो उनसे पूछता हूं, अच्छा बच्चों बताइए आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? द यूजुअल रिप्लाई जो मुझे अपने स्टूडेंट से मिलता है, सर वी वॉन्ट टू बिकम वेरी वेरी सक्सेसफुल, हमें जीवन में बहुत बहुत सफल बनना है। इस सवाल से मैं पूछना चाहूंगा आपने से, कितने भाई बहने अपने जीवन में सफल बनना चाहते हैं, वो जरा हाथ उठाएं। वेरी गुड, राइट, एब्सोल्युटली ओके। तो मैं अपने स्टूडेंट से नेक्स्ट प्रश्न पूछता हूं, अच्छा बच्चों आप जीवन में सफल क्यों होना चाहते हैं? तो बच्चे जवाब देते हैं, सर इट गिव्स अस लॉट ऑफ नेम, पोस्ट, पोजीशन, डेजिग्नेशन, गुड, बहुत अच्छा, नथिंग रॉन्ग इन इट। तो फिर मैं बच्चों से पूछता, अगर ये भी अचीव कर लिया व्हाट नेक्स्ट? तो आपको याद होगा पुराने जमाने में एक बहुत पॉपुलर हिंदी फिल्म आई थी, और इस पॉपुलर हिंदी फिल्म का नाम था रोटी कपड़ा और मकान। फाइनली वी कम डाउन टू द बेसिक्स ऑफ रोटी कपड़ा और मकान। जब मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा तो एक खड़े होकर कह रहा, सर दिस इज आउटडेटेड सिलेबस। मैंने कहा बताइए नया सिलेबस क्या है? तो उन्होंने बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, सर रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल सर। राइट, फाइन, परफेक्टली राइट। आज मैं आप सभी पेरेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि जो रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल है ना, यह हमारी आवश्यकता है, नेचुरली इट इज अ मोटिवेटिंग फैक्टर। लेकिन दोस्तों ये जो आवश्यकता है ये हमारे शरीर की आवश्यकता है। पिछले 3 दिनों में आप हर वक्ता से हर सेशन में ये सुन रहे थे कि आप शरीर नहीं हो, आप कौन हो? आप एक चैतन्य शक्ति ऊर्जा हो, आत्मा हो। आपको लगता होगा इस संसार में से बहुत सारे लोग हैं जो सोल कॉन्शियस या आत्मिक स्मृति का शायद है ना जीवन में कितना महत्व है समझा नहीं होगा, लेकिन यहां पर आपने देखा हर वक्ता आपको इस पर बहुत ज्यादा एम्फसाइज करता है। कोई व्यक्ति आत्मिक स्वरूप को महसूस नहीं करता, जीवन में क्या फर्क पड़ता है, आज के टॉपिक में संदर्भ में मैं बताऊंगा, जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य में परिवर्तन पड़ता है। क्योंकि जब हम अपने आप को शरीर के स्वरूप में समझते हैं तो शरीर की जरूरत है, लेकिन जैसे ही हम अपने आप को सोल कॉन्शियस स्वरूप में महसूस करते हैं, इसे आइंस्टीन एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व फ्रॉम द सेम कॉन्शियसनेस दैट यू हैव क्रिएटेड इट। आई रिपीट, नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व फ्रॉम द सेम कॉन्शियसनेस दैट यू हैव क्रिएटेड इट। हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें कॉन्शियसनेस है, अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा तो इस कॉन्शियसनेस को चेंज करना पड़ेगा। कुछ समय पहले भारत की एक बहुत प्रसिद्ध नायिका दीपिका पादुकोण, उन्होंने NDTV में एक इंटरव्यू दिया था विद बरखा दत्त। बरखा दत्त के साथ दीपिका पादुकोण बैठी थी, उसकी मां बैठी थी, उसके साथ उसके साइकियाट्रिस्ट बैठे थे, और दीपिका ने उस इंटरव्यू में सारे विश्व को यह बताया कि यस आई एम सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, और आज मैं सारे विश्व को ये बताना चाहती हूं कि जब मैं डिप्रेशन में आई तो मुझे महसूसता हुई कि मुझे मदद चाहिए. आई नीड काउंसलिंग, आई नीड हेल्प, आई नीड अ साइकेट्रिस्ट हेल्प. सारे विश्व को उन्होंने बताया, राइट? अगर सोचा जाए तो दीपिका के पास सब कुछ था, नाम, मान, शान, शोहरत, एवरीथिंग, द बेसिक नेसेसिटीज वॉज देयर, बट स्टिल शी लैंडेड अप इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन. क्यों? तब आइंस्टीन जो कहते हैं उस पर जरूर विचार करना चाहिए. नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व फ्रॉम द सेम कॉन्शियसनेस दैट यू क्रिएटेड इट. सभी यहां जो बैठे हैं पेरेंट्स को मैं आप रिक्वेस्ट करता हूं, जब आप अपने बच्चों से मिलेंगे, जो शिक्षक यहां बैठे हैं, एक छोटा सा परिवर्तन करना चाहिए दोस्तों, लक्ष्य. और आज तक हमने अपने बच्चों को लक्ष्य ये दिया कि माय डियर स्टूडेंट्स यू हैव टू बिकम वेरी वेरी सक्सेसफुल, नथिंग रॉन्ग इन इट. लेकिन एक छोटा सा परिवर्तन आप करेंगे, अगली बार जब अपने बच्चों से मिलेंगे तो बहुत प्यार से कहना, बच्चों जीवन का लक्ष्य सफलता के साथ साथ खुशी बहुत जरूरत है. अपार्ट फ्रॉम बिकमिंग सक्सेसफुल माय डियर चिल्ड्रन, यू ऑल्सो नीड टू बिकम वेरी वेरी हैप्पी. ये कीवर्ड देना बहुत जरूरी है हमारे बच्चों को, क्योंकि अगर हमने ये कीवर्ड खुशी का, हैप्पीनेस का बच्चों में दिया तो हमारे बच्चे क्या करेंगे, गूगल में टाइप करेंगे हाउ टू बिकम हैप्पी, सर्च बटन क्लिक. आज मेरे विद्यार्थी क्या सर्च कर रहे हैं? मेरे विद्यार्थी यह सर्च कर रहे हैं गूगल में कि भारत का सबसे बेस्ट IIM कौन सा है. मेरे विद्यार्थी यह सर्च कर रहे हैं गूगल में कि UK का बेस्ट 10 यूनिवर्सिटीज कौन सा है. लेकिन जीवन का लक्ष्य, इट वॉज अ क्वेस्ट, इट वॉज अ डिस्कवरी फॉर हैप्पीनेस, खुशी. भारत में करीब 16 IITs हैं. क्योंकि मैं मुंबई को बिलोंग करता हूं, मैं बहुत प्यार से आपको मुंबई दर्शन के लिए इनवाइट करता हूं मुंबई में. और जब मुंबई में आएंगे, सारा मुंबई दर्शन करते हुए, भारत का जो बेस्ट IIT है, दैट इज IIT बॉम्बे. स्टैटिस्टिक्स बताता हूं दोस्तों, लास्ट टू लास्ट ईयर ऑफ द 100 स्टूडेंट्स हु टॉप द जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, स्टैटिस्टिक्स कहता है मोर देन 70% स्टूडेंट्स ज्वाइन किए थे IIT बॉम्बे कैंपस में. कभी टाइम मिलेगा तो IIT बॉम्बे कैंपस का चक्कर लगाना दोस्तों. वहां कोई प्रोफेसर मिलेंगे, कोई विद्यार्थी मिलेंगे तो उनको बहुत प्यार से पूछना, इन द लास्ट वन एकेडमिक ईयर हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ IIT बॉम्बे कमिटेड सुसाइड. पिछले एक साल में कितने बच्चों IIT के आत्महत्या किए. जब एक विद्यार्थी IIT बॉम्बे कैंपस में एंट्री करता है दोस्तों, सफलता उसका अधिकार बन जाता है, क्योंकि ही एसोसिएट्स हिमसेल्फ विद अ ब्रांड. कैंपस प्लेसमेंट 100% श्योर है, फिर भी स्टूडेंट्स ऑफ IIT आर कमिटिंग सुसाइड. ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हमारे ब्रह्मा कुमारी में वो कॉन्फ्रेंस ऑफिस के साइड में लाइब्रेरी है. आप उस लाइब्रेरी में टाइम्स ऑफ इंडिया दो दिन के न्यूज़पेपर, कल परसों का न्यूज़पेपर लिखे, साइड में कॉलम लिखा हुआ है IIT मद्रास स्टूडेंट कमिट सुसाइड, MTech स्टूडेंट ऑफ IIT मद्रास. ये जो बच्चे जो IIT में जाते हैं बहुत बुद्धिशाली होते हैं, फिर भी वो आत्महत्या कर रहे हैं. लक्ष्य जीवन का आत्महत्या नहीं था दोस्तों, बट इट इज हैपनिंग. मैं IIM की बात करता हूं. दो साल पहले वन गर्ल स्टूडेंट ऑफ IIM बैंगलोर कमिटेड सुसाइड. इस प्रकार के जब घटनाएं होते हैं तो हम लोग थोड़ा सा उसको स्टडी करते हैं कि आने वाले समय पर अगर हम अपने बच्चों को सुरक्षा की तरफ लेकर जा सकते हैं तो हमें इस इंसिडेंट से सीखना चाहिए. द गर्ल स्टूडेंट ऑफ IIM बैंगलोर कमिटेड सुसाइड, तो उन्होंने हॉस्टल रूम में अपने जीवन के माइलस्टोन्स लिखे थे कि मुझे जीवन का लक्ष्य क्या है. माइलस्टोन्स, यात्रा करते हैं ना तो बहुत सारे माइलस्टोन्स मिलते हैं आपको. पहला उन्होंने लिखा था IIM टैग, मुझे IIM में एडमिशन मिलना है. दूसरा लिखा था 8-figure मंथली सैलरी. तीसरा लिखा था मर्सिडीज बेंज 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये 10 में से पहला शी वॉज एबल टू अचीव इट. दूसरा तीसरा वॉज ऑन द पाइपलाइन, बट फिर स्टिल शी कमिटेड सुसाइड. पता है कारण क्या था? कारण ये था कि 10 माइलस्टोन में उन्होंने नहीं लिखा कि आई नीड टू बी हैप्पी इन माय लाइफ, मेरे जीवन में खुशी ये बहुत जरूरत है. दोस्तों अगर वो लिखती थी ना तो शायद मन में कभी भी आत्महत्या का संकल्प नहीं आता था. और आपको पता होगा आत्महत्या अचानक नहीं होता. ऐसा नहीं होता कि आज सुबह उठे तो थोड़ा सा आत्महत्या करने का मूड आ रहा है, चलो अटेम्प्ट करते. ऐसा नहीं होता दोस्तों, बहुत समय का एक इमोशनल डेंट होता है.
और अचानक एक ट्रिगर इवेंट आता है, जिस ट्रिगर इवेंट में कैंडिडेट ये भूल जाता है कि वो क्या कर क्या रहा है, उसका जीवन का लक्ष्य क्या है वो भूल जाता है। आपको आश्चर्य होगा दोस्तों, दिस गर्ल स्टूडेंट ऑफ IIM बैंगलोर कमिटेड सुसाइड। उसका ट्रिगर इवेंट, कैटलिस्ट इवेंट पता क्या था? कैटलिस्ट इवेंट ये था कि वन ऑफ हर फ्रेंड पुट अप अ वेरी नास्टी रिमार्क अबाउट हर इन द फेसबुक। उसके एक फ्रेंड ने उसके बारे में बहुत गलत बातें फेसबुक में लिखा, और जब इस लड़की ने पढ़ा उसको इतना गुस्सा आया, इतनी नाराजगी आई, उसने इमीडिएटली फेसबुक में रिप्लाई लिखा, आई हेट यू, मुझे आपसे बहुत नफरत है, केम टू द हॉस्टल रूम, कमिटेड सुसाइड। कहीं ना कहीं अपने जीवन के इमोशंस को फील करना, अपने ओरिजिनल स्वरूप को महसूस करना, शायद ये कभी भी हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं रहा है। ऐसे आत्मा के जो 7 गुण हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। और दोस्तों, ये जब ये आत्मा के स्वरूप में बनते हैं, हमारा लक्ष्य जब क्लियर होता है कि शरीर की आवश्यकताओं के साथ साथ, बिल गेट्स, वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, सारा धन संपत्ति उसके पास है, राइट? उसके बाद वो खुशी के लिए ही वेंट ऑन टू डूइंग, ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर सोशल सर्विस। खुशी चाहिए, आनंद चाहिए। इस संसार में आप ऐसे बहुत सारे लोग देखेंगे जिसमें जब उनको लक्ष्य मिल जाता है, करेक्ट लक्ष्य, तो एक दीवानगी, एक जुनून, एक पैशन। इसे कहते हैं, फॉर एक्सलेंस इन लाइफ यू शुड बी पैशनेट। पैशन ये बहुत बहुत जरूरत है। जीवन में आप कोई भी कार्य करेंगे, आप देखेंगे जब आपका लक्ष्य क्लियर है, आप अकेले भले चल रहे हैं, लेकिन आप जब चलना आरंभ करते हैं जुनून के साथ, एक दीवानगी के साथ, एक हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन के साथ, और जब आप चलने लगते हैं तो बहुत लोग आपको रोकेंगे, टोकेंगे, शायद आप पर हंसी मजाक करेंगे, लेकिन उनमें ऐसी दीवानगी होती है जो चलते रहते हैं। एनी न्यू प्रोजेक्ट, पीपल विल बी ऑलवेज बी देयर टू क्रिटिसाइज यू। ऐसे इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, अगर अपना लक्ष्य बहुत क्लियर है, भले आप अकेले चल रहे हो, चलिए उस लक्ष्य की ओर। और कहते हैं, डोंट थिंक अबाउट व्हाट अदर्स आर थिंकिंग अबाउट यू, फॉर दे देमसेल्व्स आर वरीड व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट देम। ये मत सोचो कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो खुद ये सोच रहे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो, राइट? भले अकेले हो, चलिए। इंडियन रेलवे की जब हम बात करते हैं, तो इंडियन रेलवे ने आज से अराउंड 30 years बिफोर जब पहली बार कंप्यूटर्स को, टेक्नोलॉजी को इंडियन रेलवे में इंटीग्रेट किया, तो बहुत लोगों ने आवाज की, कहा कि नहीं, इंडियन रेलवे में अगर कंप्यूटर्स आ जाएगा तो बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन जो विजनरी होते हैं, जो बहुत दूर का देखते हैं, उनको मालूम था 2015 में अगर हमने कंप्यूटर्स को इंट्रोड्यूस, तब तक अगर हमने कंप्यूटर्स को स्टेबलाइज नहीं किया, देयर विल बी कैओस इन द रेलवे स्टेशन। और आज 2015 में जस्ट इमेजिन करिए दोस्तों, कि अगर इंडियन रेलवे में अगर वो कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस नहीं हुआ होता, तो आज क्या हालत होती। लेकिन लोगों ने क्रिटिसाइज किया, करेंगे। जब रेलवेज और रोडवेज के बीच में एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, जहां पर ट्रक्स को आप देखते हैं रेलवे के ऊपर रखकर लेकर जाया जाता है, लोगों ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन फिर उसका कुछ समय के बाद उसका इफेक्ट देखा, राइट? द लेटेस्ट प्रोजेक्ट जो चल रहा है, इट इज अ बुलेट ट्रेन। और जब बुलेट ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, शायद बहुत सारे लोग उसके कॉस्ट इफेक्टिवनेस को देखकर क्रिटिसाइज करेंगे। और आज के दिन पर अगर हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस को देखते हैं, तो लगता है इसकी जरूरत नहीं है। द फर्स्ट बुलेट ट्रेन जिसका कंसेप्शन प्लान ऑलरेडी इज इन पेपर, और धीरे धीरे वो आ जाएगा, इट्स अ बुलेट ट्रेन कॉरिडोर फ्रॉम अहमदाबाद टू मुंबई एंड मुंबई टू अहमदाबाद। इसकी टोटल कॉस्टिंग इंडियन रेलवे कहती है अप्रोक्सीमेटली 60,000 crore है, राइट? अब आप देखेंगे, अगर मुंबई से अहमदाबाद अगर आप फ्लाइट को देखते हैं, तो इट कॉस्ट हार्डली एट अ मिनिमम लेवल फ्रॉम 2700 पीक डेज में, फेस्टिवल डेज में करीब 5,000-6,000 तक जाता है। 60,000 crore अगर बुलेट ट्रेन के लिए आज इंडियन रेलवे इन्वेस्ट कर रही है, तो व्हेन इट विल रीच द ब्रेक इवन पॉइंट, और कितना कॉस्टिंग करना चाहिए। लेकिन जो विजनरीज हैं, शायद आज कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं हो रहा है, लेकिन आज से अगर 20 वर्ष 30 वर्ष के बाद देखेंगे तो शायद सिचुएशन ऐसी होगी कि हर ट्रेन इन इंडिया वुड बी अ बुलेट ट्रेन। और अगर हमें 20 वर्ष के बाद वो बुलेट ट्रेन को कंसीव करना है तो दोस्तों कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी। यू हैव टू मेक अ स्टार्ट नो मैटर द होल सिस्टम क्रिटिसाइजेस यू। कहते हैं सबसे पहली बार जब लोगों ने पंछियों को उड़ते हुए देखा तो उनके मन में एक संकल्प आया कि एक दिन मनुष्य इस तरीके से उड़ना चाहिए। उनको उनके दोस्तों ने क्या कहा होगा, यू आर क्रैक क्रेजी गॉट नट्स एंड बोल्ट्स बट टुडे द टेक्नोलॉजिकल मार्वल इज एन एरोप्लेन। और दोस्तों ये जब एरोप्लेन इन्वेंट हुआ तो अचानक एक सुप्रभात में नहीं हुआ, राइट? लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे लोग मिलकर गिरे टूटे तोड़े और फिर धीरे 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 आज हम लोग बहुत सुरक्षा के साथ एरोप्लेन की जर्नी करते हैं और बहुत स्पीड के साथ बहुत वेलोसिटी के साथ करते हैं। लेकिन जो लोग वो इन्वेंशन और डिस्कवरीज कर रहे थे उनमें एक चीज था और वो था वो जुनून, वो दीवानगी, वो दीवानापन। और आज हम इतनी आराम से जा रहे हैं क्योंकि उनको अपने जीवन में उनका लक्ष्य बहुत क्लियर था कि एक दिन मनुष्य पंछी की तरह उड़ सकता है। आप में से कितने लोग उन दीवानों को देखना चाहते हैं, जरा हाथ उठाएं। वाह, वेरी गुड। तो मैं आपको वो एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें ये दीवानों को आप बहुत अच्छी तरह से मिल सकते हैं और एंड में इनके लिए बहुत जोर से आप तालियां भी बजाएंगे। पहले देख लेते वीडियो को, ऑडियो कर दें।
Man started to think. He wanted to fly. But flying was strictly for the birds. And continued to be so for thousands of years. Man, eternally optimistic, kept trying. Encouraged by his many successes, man kept trying. Through his genius and his inventiveness, he managed to get his machines off the ground. And sometimes he brought them down again. All over the world, early pioneers were making flying history. And in Italy, Count Emilio Ponticelli made what many people claimed was the first long-distance flight. The doubt about it, by 1910, flying had become the rage. Man had conquered the air, and people everywhere were all agog about those magnificent men in their...
जोर से तालियां बजाइए. कैसे लगे ये दीवाने? देखा आपने उनका जुनून, गिरे, टूटे, तोड़े, लेकिन लगे रहे. और आज हम सभी कितने सुरक्षा के साथ, कितने सहज रीति के साथ, वेलोसिटी और स्पीड के साथ हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते, राइट? ये इनका रिजल्ट ऑफ दिस दीवानापन है. तो पहला है लक्ष्य, दूसरा दोस्तों, और वो है लक्षण. मैं आपको एक सर्वे का रिजल्ट बताता हूं, क्योंकि मैं खुद एक शिक्षक हूं, तो शिक्षा के क्षेत्र पर मैं सर्वे बताता हूं. एक बार एक सर्वे किया गया कि जो भी प्रोफेसर जो पीएचडी करते हैं, डॉक्टरेट डिग्री, उसके वो क्यों डॉक्टरेट डिग्री करते हैं? तो एक सर्वे किया गया. सर्वे में रिजल्ट ये देखा गया कि जो 10% लोग इसलिए पीएचडी करते हैं क्योंकि उनको अपने सब्जेक्ट के प्रति बहुत जेन्युइन इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा रुचि है अपने विषय के प्रति. ये 10%. 40% लोग उन्हें डॉक्टरेट डिग्री इसलिए यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में की क्योंकि यूजीसी एआईसीटी का एक नॉर्म है, रूल्स है, कि अगर आपको एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, एडजंक्ट फैकल्टी प्रोफेसर बनना है, अगर आपको प्रोफेसर पोस्ट, एचओडी, डीन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल बनना है, तो आपको पीएचडी करनी ही पड़ेगी. 40% लोग, 10% लोग जेन्युइन इंटरेस्ट, 40% लोग क्योंकि उनको प्रमोशन चाहिए था इसलिए उन्होंने पीएचडी रिसर्च किया. फिर आप पूछेंगे, स्वामी भाई ये 50% लोग ने क्यों पीएचडी की? एनी गेस? बाकी 50% लोगों ने पीएचडी क्यों की? क्यों की बहन जी? क्या चीज? एब्सोल्युटली राइट. ये बहन जी को एकदम सही जवाब मालूम है. कैसे पता चला? आपने खुद डॉक्टरेट डिग्री की है क्या? नहीं, आपकी बहुत सारी सखियों ने की है. अच्छा, ओके ओके. नो, उस डॉक्टर की तो बात अलग है. आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट मेडिकल डॉक्टर, आई एम स्पीकिंग अबाउट डॉक्टरेट डिग्री इन अ ओके इन अ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन और एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, राइट? फिर भी आपका जो जवाब एकदम करेक्ट था बहन जी. 50% से ज्यादा लोग उस सर्वे में पाया गया इसलिए उन्होंने वो पीएचडी की क्योंकि वो चाहते थे कि उनके नाम के आगे डीआर लिखा जाए. 50% से जो ज्यादा लोग. अब देखिए, ये जो तीन प्रकार के जो लोग सर्वे में देखे गए, अब बताइए जब वो पीएचडी करेंगे उनका लक्ष्य के आधार पर किस प्रकार का लक्षण दिखाई देगा. जो 10% जो लोग जो एक्चुअली एकेडमिक इंटरेस्ट के कारण कर रहे हैं, उनको कभी तनाव नहीं आएगा, उनको कभी प्रेशर नहीं आएगा, उनमें वो दीवानगी रहेगी. और बिलीव मी, ये 10% लोगों को कहीं ना कहीं वो यूरेका फीलिंग आएगा, उनको उनका रिजल्ट मिलेगा. लेकिन जो बाकी जो 90% जो लोग हैं बस पीएचडी अपने नाम के अगेंस्ट में डीआर लिखने के लिए कर रहे हैं, आप बताइए उनके जीवन में जब वो पीएचडी कर रहे हैं तो किस प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे? सोचने की बात है. मैं इस प्रोग्राम के आने के पहले दोस्तों करीब 10 दिन मैं एक एजुकेशनल कैंपेन में था. ब्रह्मा कुमारी का जो एजुकेशन विंग है उस विंग के आधार पर मैं सेवा में था. पूरा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का चक्कर लगाया. बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस में मैं गया, लेकिन एक जगह में गया जिसको मुझे बहुत अच्छे अनुभव हुआ. राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है पिलानी. वहां पर एक बहुत फेमस विश्व का एक इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जो बहुत वर्ष पहले रिस्पेक्टेड बिरला जी ने उसको एस्टैब्लिश किया था. और उस नेम ऑफ द वंडरफुल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट इज बिट्स पिलानी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिलानी, जो बहुत फेमस है आईआईटीज और एनआईटीज के एक इक्विवेलेंट पे. और भारत का जो फर्स्ट प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी इज बिट्स पिलानी. जब मैं वहां एक प्रोग्राम कर रहा था, बहुत खुशी की बात यह है, बहुत अच्छा लगता है कि आज के युवा भाई बहने भी इस आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं. शाम को 5 बजे का प्रोग्राम था, पूरा ऑडिटोरियम फिल हो गया था. और उस ऑडिटोरियम में जब प्रश्नोत्तर का सेशन चला तो एक विद्यार्थी ने खड़े होकर मुझसे पूछा, सर आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट माई गोल ऑफ लाइफ, मुझे अपना जीवन का लक्ष्य समझ में नहीं आ रहा है. मैंने कहा, अगर ये प्रश्न आप 12वीं कक्षा में पूछते तो शायद मैं आपको गाइड कर पाता था, बट नाउ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ बिट्स पिलानी और फिर आप पूछ रहे हो मेरा जीवन का लक्ष्य समझ में नहीं आ रहा है, राइट? क्योंकि लोगों का बहुत बड़ा सपना होता है कि मुझे बिट्स पिलानी में एडमिशन मिलना चाहिए। आपको तो एडमिशन मिल गया। तो उसने कहा, पता क्या कहा, बोला सर मुझे लगता था ये जो सारे इंस्टीट्यूट्स हैं ये बहुत ज्यादा हम लोग सुनते थे, एक हाइप क्रिएट होती थी, लेकिन जब हम उस इंस्टीट्यूट में पहुंचते हैं तो हमको पता चलता है दिस इज एनी अदर इंस्टीट्यूट। हाँ भले बहुत नाम शान है लेकिन शायद मुझे महसूसता नहीं हो रही है, राइट? देखिए पुराने जमाने में अगर किसी इंजीनियर किसी को डॉक्टर बनना है तो पूरे गांव में कोई इंजीनियर नहीं होता था तो पापा उसको कहते थे, बच्चे इस गांव में कोई इंजीनियर नहीं है, प्लीज तेरे को बनना है। तो लक्ष्य रखता था कि मुझे इंजीनियर बनना है और उस तरीके से लक्षण नजर आते थे। लेकिन आज की अवस्था ये है, केरला जैसे एक छोटा सा प्रदेश में देर आर 165 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन अ स्मॉल स्टेट लाइक केरला, राइट? 165 इंजीनियरिंग कॉलेजेस दोस्तों। और लेटेस्ट, ये तालियां बजाने वाली बात नहीं है, लेटेस्ट फिगर ये है कि यूजीसी और एआईसीटी काफी इंजीनियरिंग कॉलेजेस को बंद कर रहे हैं, राइट? तो पता है मैंने उस बच्चे को जवाब क्या दिया, मैंने कहा एनीवे यू हैव टू स्टडी 4 years ऑफ इंजीनियरिंग, इन दिस 4 years आपका कोई चॉइस नहीं है, इंजीनियरिंग करने के बाद आपको क्या करना है उस पर जरूर विचार करना, लेकिन ये 4 साल बिकॉज यू हैव ज्वाइंड एन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एंजॉय योर लाइफ एज अ स्टूडेंट। एक अच्छे विद्यार्थी के लक्षण आप में नजर आने चाहिए, व्हाट इज अ गुड स्टूडेंट, वो लक्षण अगर आप में आने लगेगा दिस 4 years ऑफ इंजीनियरिंग यू विल एंजॉय। 4 साल के बाद आपको करना है या नहीं करना ये आपका चॉइस है, या आपकी स्वतंत्रता है या आपकी फ्रीडम है, वो लक्षण नजर आना चाहिए। आज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, जब भी आप किसी अपने बच्चों से पूछते ना, जब आपके घर में कुछ लोग आते हैं तो लोग आपके बच्चों से पूछते हैं, अच्छा बच्चा बता तेरे को क्या बनना है, कुछ बच्चे कहते हैं मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, प्रोफेसर बनना है, ऑफिसर बनना है, एवरीथिंग इज ओके, और वो चेंज भी हो सकता है, आपके इमोशंस आपकी भावनाओं के अनुसार वो लक्ष्य चेंज भी हो सकता है, दैट इज योर चॉइस। अगली बार जब आप किसी बच्चे से ये प्रश्न पूछ रहे हो तो एक चीज जरूर ऐड करना, जो मैंने उस बिट्स पिलानी के बच्चे से कहा, मैंने कहा बिकम अ गुड स्टूडेंट माई डियर बॉय, बिकम अ गुड इंजीनियर, बिकम अ गुड प्रोफेसर, बिकम अ गुड टीचर। प्रोफेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट दोस्तों, प्रोफेशन एक दिन इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाएंगे, एक दिन इंजीनियर भी बन जाएंगे, फिर आपको वो लक्ष्य नजर नहीं आएगा। बट जैसे ही आप अपने थोड़ा सा चेंज करते हो लक्ष्य को कि मुझे सिर्फ इंजीनियर नहीं बनना, आई हैव टू बिकम अ गुड इंजीनियर, धीरे धीरे वो गुडनेस आपके जीवन में आने लगेगी। मुझे याद आता है मैं एक स्कूल में गया था तो वहां पर एक टीचर ने एक बहुत अच्छा अनुभव सुनाया। शी वॉज अ प्राइमरी स्कूल टीचर, क्लास 1 की वो शिक्षिका थी। पता उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा स्वामी भाई मेरे जीवन का लक्ष्य था कि मैं बड़े बच्चों को पढ़ाऊं, कहीं ना कहीं परिस्थिति जीवन का ऐसा था कि मैं कर नहीं पाई, और फाइनली आई लैंडेड अप एज अ प्राइमरी स्कूल टीचर, और जब मैं क्लास 1 के बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे कहा गया मेरा इतना स्वमान गिर गया, माई सेल्फ एस्टीम गॉट शैटर्ड, और मैंने यही सोचा कि मैं अपने दोस्तों को सखियों को कैसे बताऊं, हाउ शुड आई टेल हर कि आई एम अ टीचर ऑफ अ फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। बोला मेरा सेल्फ एस्टीम बहुत, और स्वामी भाई जब मैं पहली बार उस क्लास में गई मेरे सामने 60 बच्चे इतना परेशान करते, इतना हाइपर एक्टिव, इतना आवाज करते, मैं इन 60 बच्चों को कैसे कंट्रोल करूं, ये मेरा प्रॉब्लम था जीवन का। लेकिन उन्होंने एक बहुत सुंदर अनुभव सुनाया, स्वामी भाई जब से मैंने आपके PMTV में शिवानी बहन को सुनने लगी, आपके प्रोग्राम्स हम सुनने लगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे मेडिटेशन सीखना चाहिए, और मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में मेडिटेशन सीखने के लिए गई। और बोला जब मैं वो मुरली सुनने लगी और जो मुरली में ये बात आई मीठे बच्चे, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि परमात्मा अपने बच्चों को बहुत प्यार से मीठे बच्चे कहते हैं। और फिर जैसे ही वो क्लास में आए उसके 60 बच्चों को उसकी नजरिया चेंज आने होने लगा कि ये सारे ईश्वर के छोटे 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 प्यारे बच्चे हैं, फरिश्ते हैं, और वो परिवर्तन उन्होंने किया। शायद उस स्कूल में वो अनुभव सुना रही थी मेरे से ज्यादा स्किल्ड टीचर हैं, मेरे से ज्यादा बुद्धिशाली टीचर्स होंगे, लेकिन उन्होंने कहा स्वामी भाई थैंक्स टू दिस ब्यूटिफुल टेक्निक ऑफ मेडिटेशन आज पूरे उस स्कूल में आई एम फेमस, कि शी इज द ओनली टीचर ऑफ दैट स्कूल हु इज एबल टू मैनेज क्लास 1 स्टूडेंट्स विदाउट अब्यूजिंग, विदाउट गेटिंग एंग्री, विदाउट स्लैपिंग देम। उनके प्रिंसिपल हमेशा पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में कहते हैं ये एक ऐसी शिक्षिका है जो क्लास 1 के बच्चों को बिना गुस्सा किए, बिना डांटे, बिना मारे, बिना फटकारे ये इसको मैनेज कर सकती है। और आज वो कहती है, स्वामी भाई मेरा सेल्फ एस्टीम इतना बढ़ गया कि मैं छोटे छोटे इनोसेंट फरिश्तों को पढ़ाती हूँ। हम तो आपसे भी स्वामी भाई बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं, आप तो बड़े बच्चों को पढ़ाते हो, हम तो छोटे छोटे फरिश्तों को पढ़ाते हैं। सारा दृष्टिकोण और सारा लक्षण चेंज हो गए, राइट। मुझे याद आता है दोस्तों, 20 वर्ष पहले मैं भी एक विद्यार्थी के स्वरूप में आपकी तरह इस विद्यालय में आया था, और आप जैसे आए हो, और आप सभी बहुत अच्छे विद्यार्थी के स्वरूप में आए हो, एकदम टाइम पर आते हो, टाइम पर जाते हो। एक बार अपने लिए जोर से तालियां बजाइए, यू आर अ गुड स्टूडेंट। और एक अच्छे विद्यार्थी के लक्षण है ना, ही शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ द टाइम फैक्टर। और मैं भी अपने समय का जरूर जरूर ध्यान रखूंगा, समय के पहले मैं आपको जरूर जरूर कंप्लीट करूंगा, राइट। लेकिन लक्षण एक अच्छे विद्यार्थी का, समय का ध्यान रखना। 20 वर्ष पहले मैं भी विद्यालय में आया था, और उस समय हमारा इसी प्रकार का एक कॉन्फ्रेंस ऊपर था मधुबन में, उस समय ये शांतिवन नहीं था। और जब मैं इस तरह के एक विद्यार्थी के स्वरूप में बैठा, तो मेरे मन में एक ही प्रश्न था कि आज हमारे इंडस्ट्री में हम लोगों को सेलेक्ट करते हैं, रिक्रूट करते हैं, लेकिन उसको रिटेन करना खास करके प्राइवेट सेक्टर में एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन 20 वर्ष पहले जब मैं ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में आया, तो मैंने देखा यहां के भाई बहने अपने जीवन को समर्पित करते, छोटी बात नहीं है दोस्तों। और मुझे उस प्रश्न का जवाब मिला जब ओपनिंग कॉन्फ्रेंस के ओपनिंग सेशन में हमारे बड़े दादी जी, जिनको हम बहुत प्यार से दादी प्रकाशमणि जी कहते हैं, वो आए और अपने जीवन का लक्ष्य क्या है बताए। मैं आप सभी से बहुत प्यार से दादी जी को याद करते हुए बहुत प्यार से आपसे पूछना चाहूंगा दोस्तों, पिछले 3 दिनों में एक अच्छे विद्यार्थी होकर आप इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में नियमित तौर पर पढ़ाई कर रहे हो, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप में से कितने भाई बहन हैं जो पहली बार इस भगवान के घर पर आए हैं, वो जरा हाथ उठाएं। वाओ, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, आप बहुत भाग्यशाली हो। अच्छा, अब मैं आपसे बताऊंगा, आप पहली बार इस विद्यालय में आए हो तो बताइए, 3 दिन से आप यहां पर विद्यार्थी होकर बहुत अच्छी तरह से बहुत प्यार से पढ़ रहे हो, बताइए 3 दिन में आपने क्या लक्ष्य जीवन में लिया, क्या लक्ष्य मिला आपको, व्हाट इज योर विजन ऑफ योर लाइफ, क्या लक्ष्य मिला। बहन जी बताइए, जो सामने बैठे बताइए, ये 3 दिन में आप पढ़ाई कर रहे हो और आप तो एकदम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, एकदम सामने आकर बैठे हो, बताइए क्या लक्ष्य मिला। हाँ बताइए बहन जी, हाँ आप बताइए, आप बताइए, पहली बार आए हैं, टू बी हैप्पी। ओके, इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, 3 दिन से आप इतनी मेहनत कर रहे हो, हाउ टू बी हैप्पी का वीडियो घर पे देख सकते थे। अच्छा बताइए क्या लक्ष्य मिला बहन जी, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, थोड़ा बात करिए। अच्छा, थोड़ी सी मन का प्रॉब्लम था लेकिन अभी मन हैप्पी है, बहुत अच्छा, ये लक्ष्य। हम बताइए, माई फ्रेंड फ्रॉम पंजाब फिल्मी, बताइए सर, टू ट्रीट द लाइफ इन अ प्रॉपर वे, ओके दैट ऑल ओके। लेकिन दादी जी ने जो हमको 20 वर्ष पहले बताया था, मैं बहुत प्यार से बताता हूँ, दादी जी ने बहुत प्यार से हम सबको कहा था और इतनी अच्छी बात कही। अब आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, टू बी हैप्पी इन लाइफ, टू लीड अ लाइफ इन अ नॉर्मल लाइफ, वो सब आप जी रहे हो, कहीं ना कहीं खुश भी हो, लेकिन एक लक्ष्य को याद करके जाना। और जैसे आप जब भी आप उस लक्ष्य को याद करेंगे, जितना आपका लक्ष्य ऊंचा उतने लक्षण आप में नजर आएंगे। दादी जी ने बहुत प्यार से कहा, ओके ओके फाइन, परफेक्टली राइट। दादी जी ने जो लक्ष्य बताया, उन्होंने कहा बहुत अच्छे से बात बताई, उन्होंने कहा देखिए, जैसे घर में कोई व्यक्ति होता ना, बहुत बुजुर्ग व्यक्ति होता है, वो जब गुजर जाता है तो क्या करते हो, तो उसकी तस्वीर हम लोग ना घर पे लगा देते हैं, और सब लोग उनके प्रति बहुत रिस्पेक्ट और रिगार्ड रखते हैं, राइट, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग थे, अनुभवी थे। अब जस्ट इमेजिन करिए, राइट, इस समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रियल मोटिवेटर्स हैं, राइट, तो हम क्या करते हैं, उनकी स्टैच्यू चौराहे पे रख देते हैं। इसका मतलब क्या था, एक समय पे ये लोग इस धरती पर थे और उन्होंने एक बहुत विशेष कार्य किया। फिर दादी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, उसी तरह इतने मंदिरों में जाकर आप देवी देवताओं के मूर्ति को बहुत प्यार से याद करते हो, मतलब क्या है, एक समय पर वो धरती पर थे, सामने कहा थे। फिर दादी ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर वो थे तो आज कहां पर हैं, आज कहां पर हैं। तो हमने से किसी ने जवाब दिया, मंदिर में है। तो दादी ने कहा, मंदिर में तो वो मूर्ति है ना,
श्री दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, परमात्मा शिव आकर ये लक्ष्य देते हैं कि नीचे बच्चों एक समय पर आप सभी, ये धरती जब स्वर्ग था तो आप देवता स्वरूप में थे, पूज्य थे, पूज्य से धीरे 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 आज पुजारी बन गए हो। अब परमात्मा ये लक्ष्य देते हैं कि बच्चे फिर से पुजारी से आपको पूज्य बनना है, देवी देवता स्वरूप बनना है। और जब ये लक्ष्य जब दादी ने दिया, मैं वहां बैठा था, मैंने ये सोचा इतने वर्ष हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इतने वर्ष हमने पढ़ाया, लेकिन नेवर हैज कम एनी लक्ष्य क्लोज टू दिस पर्टिकुलर ग्रेट विजन ऑफ लाइफ। और फिर दादी, फिर बाद में समझ में आया दादी क्यों ये लक्ष्य दे रहे थे। फिर दादी ने मुस्कुराते हुए सारे कॉन्फ्रेंस के भाई बहनों को बहुत मुस्कुराते हुए कहा, दादी कहते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है। दादी ने मुस्कुराते हुए हम सभी को पूछा, अच्छा देवी देवता का लक्ष्य है? तो हमने कहा यस। फिर दादी ने सभी को कहा, कभी देखा देवी देवताओं को सिगरेट पीते हुए, बीड़ी पीते हुए, गुटखा खाते हुए, शराब पीते हुए? अच्छा भी नहीं लगता ना। और मुझे विश्वास है जिन्होंने भी वहां सुना होगा, जब भी वो अपने स्वमान को जागृत करते कि मुझे श्रेष्ठ देवी देवता बनना है, बिलीव मी दोस्तों, ये सारे व्यसन एक सेकंड के अंदर छूटते हैं। हमारे मेडिकल विंग के कॉन्फ्रेंस में मैं काफी बार आता हूं, और मेडिकल विंग के कॉन्फ्रेंस में हमको ये बताया जाता है कि कोई भी एडिक्शन को छोड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती है, और सत्य भी है। लेकिन मैंने अपने 20 वर्ष के इस आध्यात्मिक जीवन में देखा ऐसे बहुत सारे भाई लोग जो हर घंटे में बीड़ी पीते थे, जैसे ही विद्यालय में आए उनका अपना लक्ष्य पता चला, लक्षण ऑटोमेटिकली एक सेकंड में धक के साथ वो खत्म। और आज आप सभी यहां बैठे हो तो मैं आपको बहुत प्यार से, श्रेष्ठ लक्ष्य है जीवन में अगर बहुत खुश रहना, अपने जीवन को एक अच्छा लाइफस्टाइल बनाना है, और अगर आपको फिर से मनुष्य से देवता बनना है, छोटा सा आप जरूर जरूर कर्म करना, और वो है अपने भोजन पर ध्यान देना। 3 दिन से आप यहां भोजन कर रहे हो, आपको भोजन कैसे लगा, ब्रह्मा भोजन कैसे लगा? जिनको अच्छा लगा वो जरा हाथ उठाए। अरे दो दो हाथ उठा रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। यस, शुद्ध सात्विक भोजन, सात्विक अन्न। और आज मैं आपको सबसे सिंपल से एक रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, यहां पर एक लक्षण जब आप घर पर जाएंगे तो लोगों को वो अंतर महसूस करना चाहिए, और वो है जब आप प्योर शुद्ध शाकाहारी भोजन, से नो टू नॉन वेजिटेरियन फूड, मांसाहारी भोजन नहीं। आप पूछेंगे स्वामी ऐसा क्यों करना है, इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ग्रेट मोटिवेटर, ग्रेट सक्सेसफुल पीपल, एल्बर्ट आइंस्टीन, एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, लियोनार्डो डा विंसी, पाइथागोरस, प्लेटो, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, लियो टॉल्स्टॉय, मार्क ट्वेन, कार्ल लुईस, मार्टिना नवरातिलोवा, मोहम्मद अली, अमिताभ बच्चन, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एंड स्वामी भाई। यस, मैं उस समय एक दिन एक सेशन करा था, सबने कहा स्वामी भाई इन सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं। मैंने कहा आप कितनों का ग्रुप बनाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो हूं। आप, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस ब्यूटीफुल ग्रुप ऑफ योर वेजिटेरियनिज्म, ये बहुत बहुत जरूरत है। और जब हम यहां पर बैठे हैं तो नेचुरली सेफ्टी की बात कर रहे हैं। सेफ्टी में मैं आपको कहता हूं दोस्तों, कहते हैं जो हार्ट अटैक के जो केसेस होते हैं, उसके बाद जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसको गिरीश भाई ने कल बहुत वीडियोज को दिखाकर आपको इमोशनली स्थिर किया, लेकिन तीसरा जो सबसे बड़ी जो आने वाले समय पर जो एक्सीडेंट होने वाला है, दैट इज बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट। 2 दिन पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र मोदी जी, यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने एक भाषण किया। आप लोगों ने में से कितने वो भाषण सुने पता नहीं, लेकिन उस भाषण में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने एक शब्द को यूज किया, और उन्होंने ये शब्द यूज किया, एंड दैट ही सेड इट इज क्लाइमेट सेफ्टी। और उसमें ये बात कह रहे थे वो प्राकृतिक सुरक्षा, और उन्होंने, उनका ये कहने का भाव ये था, उन्होंने कहा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो जो इमिशंस जो लेकर आते वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका प्रभाव अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज को होता है। इसे वो क्लाइमेट सुरक्षा की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं। ही यूज दिस वर्ड क्लाइमेट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अगर आपको लगता है, अपने से बहुत भाई बहनों को लगता है कि ये क्लाइमेट चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे सड़कों पर बहुत सारे वाहन आ गए हैं, हमारी इंडस्ट्रीज बहुत बढ़ गई है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं एक रिपोर्ट पढ़िए, यूनाइटेड नेशंस का 2006 में एक रिपोर्ट आया था। उस 2006 के रिपोर्ट FAO
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कहती है कि सबसे ज्यादा जो कार्बन एमिशंस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, वो इसलिए होता है क्योंकि मनुष्यों के प्लेट में नॉन वेजिटेरियन फूड के कारण। ये 2006 यूनाइटेड नेशंस का रिपोर्ट है। तो अगली बार जब आप ये सुनामी देखेंगे, सुनामी आ चुका दोस्तों, भारत की बात कहें तो रीसेंट जम्मू कश्मीर फ्लड से लेकर केदारनाथ और कुछ समय पहले नेपाल में जो भूकंप हमने देखा, ये मेजर एक्सीडेंट्स, मेजर डिजास्टर्स जो सारे विश्व के सामने हैं। अगर आपको लगता है ये बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं अपने भोजन को शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं। जैसे आप लोगों ने कोई दृढ़ प्रतिज्ञा की है, कल गिरीश भाई कह रहे थे चाहे कुछ भी हो जाए मैं सीट बेल्ट पहनकर ही गाड़ी चलाऊंगा। श्रेया बहन आपको कह रहे थे चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा शांत स्वरूप रहूंगा। स्वामी भाई आपको प्रेरणा देते हैं इस प्राकृतिक डिजास्टर से बचने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए मुझे शुद्ध सात्विक भोजन करना है, ये दृढ़ प्रतिज्ञा करके चाहिए। दोस्तों अगर आपको स्वामी भाई की बात समझ में नहीं आती है तो चलो फिर भी मैं आपको मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं, लेकिन हम जानवरों से तो कुछ समझ सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छा सा वीडियो दिखाता हूं जिसमें जानवर शायद हम मनुष्यों को एक बहुत सुंदर संदेश दे रहे हैं। एंड वी नीड टू अप्रिशिएट, ये एक रियल वीडियो है और आपको पता है जब खूंखार जानवर होते हैं जब उनको भूख लगता है ना तभी वो अपने प्रे, अपने छोटे जानवरों के पीछे भागते हैं। अगर उनको भूख नहीं लगता है तो वो कभी अपने छोटे जानवरों के पीछे नहीं जाएंगे। देखिए एक लेपर्ड है जिनको बहुत भूख लगा है,
some miracle of fate, Lucky Dina silenced the baboon before the enormous troop could notice.
और ये लेपर्ड क्या करता है, एक मंकी को, एक बंदर को पकड़ लेता है। अब देखिए आगे कहानी।
In that instant, Lucky Dina, the curious cub, made one of her many transformations. She was suddenly a slayer of her most feared enemy. Quite suddenly, this already momentous kill took an amazing twist.
और जैसे ही इस जानवर ने मंकी को पकड़ कर लेकर गए तो अचानक एक टर्न आया, ट्विस्ट आया, और क्या देखा उन्होंने, उसने देखा उस मदर मंकी के साथ एक दिन का छोटा सा बेबी मंकी।
Something moved in the dead baboon's fur, a day old newborn. It took a moment for Lakadima to notice. She's always been curious. Instead of a swift bite to the neck, Lakadima stopped, then lay down with the baboon. She didn't know how to react. Hyenas would normally send her scurrying for the trees, but this time,
इस जानवर ने उस बेबी मंकी को सुरक्षित जगह लेकर गए।
He gently lifted the baby to safety first. Only then did she return to confront the hyena. It was an aggressive defense, protecting the baby, not defending her kill. Then she turned her attention back to the baby. For a cub not yet 2 years old, the sudden arrival of a baby baboon in her life must have been confusing. Lakadima's eyes never left the baby for hours. And strangely, this newborn started following her everywhere.
इस वीडियो में वो इंग्लिश में कह रहे हैं कि कुछ समय के बाद जो बेबी मंकी था ना धीरे धीरे टाइगर को अपनी मां समझकर उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने लगा और उसको समझ में आया कि क्या वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हम मनुष्य इन जानवरों से नहीं सीख सकते, ये जानवर बोल नहीं पाते, तो अपने वो स्वरूप को जागृत करना दोस्तों। यहां बैठकर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, और आपका अगर भोजन सात्विक नहीं है योग नहीं लगेगा दोस्तों, नहीं पॉसिबल है।
इससे जो फर्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो परिवर्तन होता है, वो अपने भोजन पर, जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला लक्ष्य और लक्षण के बाद तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, और वो है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। और जो ट्रेनिंग जरूरत है ये है एट द मेंटल एंड द इमोशनल लेवल। आप देखेंगे आप बहुत सारे इंडस्ट्रीज में भी ये ट्रेनिंग होते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम सफल क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक कॉस्मेटिक इफेक्ट होता है। तीन दिन आप ये सुन रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप डायरी में सब नोट करेंगे कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन जैसे यहां से निकले, अबू रोड स्टेशन तक पहुंचे, वहां का वही वातावरण देखा, तो आपके मन में यही संकल्प आएगा, ये ब्रह्मा कुमारीज के शांतिवन तक तो ठीक था, बाहर ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये 100% ये संकल्प होगा। इसे इस विश्व के सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम की सबसे बड़ी ये ड्रॉबैक है। इसे बहुत इस संसार के ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल ट्रेनर्स हैं, जैसे रॉबिन शर्मा है, दीपक चोपड़ा है, एंथनी रॉबिन्स हैं, वो अपनी किताबों में लिखते हैं, वो ये लिखते हैं कि अगर आपको कोई भी संस्कार, आपको श्रेष्ठ संस्कार, आपको जीवन का एक संस्कार बनाना है तो उसको 21 दिनों तक कंटिन्यूसली फॉलो करो। जैसे दो दिन तो आप जबरदस्ती 4 बजे उठे, शायद आपका सर भी दर्द दिया होगा, थोड़ा बहुत नींद भी आता होगा, एब्सोल्युटली ओके। लेकिन अगर 21 दिन तक अगर आपने इसको कंटिन्यूसली किया तो 22वें दिन आपका मन आपका एक बहुत अच्छा दोस्त बनकर वो आपको मदद करेगा। 21 दिन अगर आपने सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक किया, एक्सरसाइज किया, राइट, 22वां दिन देखेंगे वो अपने आप आपको जगाएगा, ये आपका एक नेचुरल संस्कार जैसे बन जाएगा। इसे ब्रह्मा कुमारी इसमें एक बहुत सुंदर विधि है दोस्तों, जो विधि को मैं कल श्रेया बहन ने कहा, आज मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन होने में 1 मिनट लगता है, और हमारे विद्यालय में इतने सारे भाई बहने आते हैं, वेजिटेरियन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो आत्मा के अंदर जो सूक्ष्म संस्कारों में परिवर्तन अगर करना है, एंथनी रॉबिन्स, दीपक चोपड़ा जीवन को श्रेष्ठ बनाने का लक्ष्य देते हैं, लेकिन यहां परमात्मा कहते हैं बच्चे अगर आपको मनुष्य से देवता बनना है तो 21 दिन से नहीं चलेगा, इसको बहुत वर्षों तक ये अभ्यास करना पड़ेगा। मैं आपको छोटा सा इनपुट दूंगा, क्या करना है, एटलीस्ट 21 दिनों के लिए जब आप वापस अपने अपने शहरों में गांव में जाएंगे तो 21 दिनों के लिए वहां की जो मुरली क्लास चलती है, जहां वो मीठे बच्चे, नहीं तो ये इफेक्ट नहीं होगा दोस्तों। आप अपनी सखियों से कुछ समय के बाद बोलेंगे ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छा था, उनका भोजन बहुत अच्छा था, बस तो इतनी तक गाड़ी रुक जाएगी, क्या परिवर्तन आया, नहीं बहुत अच्छा अच्छा बोलते थे, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस को आपने नहीं फॉलो किया। और हर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ये मन की ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि मेरा ये सौभाग्य रहा है विश्व के सबसे ऊंचाई के युद्ध भूमि में जाने के लिए, इंडिया पाकिस्तान चाइना के संगम पर, 18,000 फुट से लेकर 28,000 के फुट पर। अगर आपको 28,000 फुट का एक थोड़ा सा समझ अगर चाहिए तो जब आप माउंट आबू जाएंगे तो वो 4,500 फुट पर है, राइट, जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो वो करीब 30,000 और 35,000 के फुट पर जाती है। उस 28,000 के फुट पर हमारे भाई बहने वहां पर अवेलेबल हैं। इंटरनेशनल योग दिवस June 21st के दिन पर मैं वल्लभ विद्यानगर में था, तो वहां पर मैंने सभी लोगों से कहा, राइट, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन योग एंड योगा, अंतर है योग और योगा में। काफी लोग कहते हैं कि हम लोग योग करते हैं ना, हम लोग मेडिटेशन करते हैं ना, क्या करते हो, श्वास पर ध्यान दे रहे हो। परमात्मा ने कहा था बच्चे श्वासोश्वास आप मुझे याद करो। आप में जो सारे भाई बहने कल का जो वर्कशॉप अगर आपने अटेंड किया होगा, आपने देखा होगा जितेन चिम्मन भाई पटेल की क्या हालत आप लोग ने की, सभी अनुभवी हैं। मैं आपको बताता हूं 25 मिनट में 15 लोगों में अगर इतना डिस्टॉर्शन हो सकता है तो जो शास्त्रों में जो लिखा वो इतना डिस्टॉर्ट हो गया, यहां पर आए हो तो उसका सार समझ कर जाओ। शास्त्रों में जो लिखा गया था, मीठे बच्चों श्वासोश्वास आप ईश्वर को याद करो, ये लिखा था। अभी हम क्या कर रहे हैं, ईश्वर को तो छोड़ दो, श्वास को याद कर रहे हैं। सही सर्किट डायग्राम नहीं है। 28,000 के फुट में अगर आप सियाचिन में जाएंगे तो मैं उस दिन इंटरनेशनल योग दिवस पर मैं पूछ रहा था, बताइए वो जवान ऑफिसर्स कौन सा योगासन करेंगे, कौन सा एक्सरसाइज करेंगे,
योगासन नहीं कर सकते, वॉकिंग नहीं कर सकते, जॉगिंग नहीं कर सकते, दोस्तों आप लोग प्राणायाम तो बिल्कुल भूलना ही नहीं, क्योंकि उस 28,000 के फुट पे अगर किसी ने प्राणायाम किया, गहरी श्वास लिया, फिर वहीं से आपको ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर इज वेरी लो, ऑक्सीजन इज वेरी लो, प्रेशर कंटेंट इज टू लो। इसे योग, ये मन का व्यायाम है, इसे कहते मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त, मन को दुरुस्त रखना जरूरी है। आप अपने गांव में जाइए, शहर में जाइए, वहां पर अगर कोई ज्योतिष है तो आप उस ज्योतिष से पूछिए मेरा भाग्य कैसा है, तो वो अपने हाथ दिखाएगा, आपको हाथ दिखाने के लिए कहेगा। आप इस घर पर आए हो, अगर परमात्मा आपके भाग्य को रेखा देखना है तो इस हाथों में नहीं देखेगा, वो तो आपके मस्तक मणि पर देखेगा। आप यहां पर आए हो, राज्यों का अभ्यास कर रहे हो, जो हमारी बहनें भाई जो मेडिटेशन कराते हैं, चाहे वो सुबह 4 बजे का हो, हर हर सत्र के बाद हो, अगर आपने इस मेडिटेशन को कंटिन्यू किया और हर दिन इस मस्तक मणि को देखते हुए कहा मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, और 1 हफ्ते के बाद आप उसी ज्योतिष के पास जाइए और अपना हाथ दिखाइए, वो आपके हाथ से ज्यादा आपका चेहरे के उस चमक को देखते हुए कहेगा बहन जी आपके जीवन में तो राजयोग आ गया। राजयोग कैसे आया? आपने अपने यहां के संकल्पों को परिवर्तन किया। When you change your thought, you change your destiny. तमिलनाडु स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में हमको केस स्टडी सिखाया गया था। वो केस स्टडी ये था कि 2 बास्केटबॉल प्लेयर्स थे और दोनों बास्केटबॉल प्लेयर्स को ये कहा गया, उन लोग दोनों पेनल्टी स्ट्रोक स्पेशलिस्ट थे, तो एक को कहा गया 3 घंटे आप उसको प्रैक्टिस करते रहना पुटिंग द बॉल इनसाइड द बास्केट, आप बस 3 घंटे तक फिजिकली प्रैक्टिस करते रहो, और दूसरे को कहा गया 3 घंटे में 1 घंटे अपने मन और बुद्धि को उस सिचुएशन पे लेकर जाओ, उस स्थिति पर लेकर जाओ जहां पर चारों तरफ इतनी आवाज आ रही है, वो लास्ट टाइम हो रहा है, पेनल्टी स्ट्रोक मिल गया है और एकदम आपका जो फिनिशिंग बॉर्डर लाइन पर है 20-21, और फिर उस समय आपको पेनल्टी स्ट्रोक मिला, अपने आप को उस सिचुएशन पर लेकर जाओ और फिर अपने मन और बुद्धि से देखो आप उस बॉल को बास्केट में डालते हुए, 1 घंटा आप अपना मन का व्यायाम करो, फिर 2 घंटा फिजिकल प्रैक्टिस करो। दोस्तों आपसे अगर मैं पूछूं कि दोनों प्लेयर्स का एक्चुअल सिचुएशन में किसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, पहले वाले का दूसरे वाले का? 100% दूसरे का, क्योंकि उसने सिर्फ फिजिकल प्रैक्टिस नहीं की, उसने ट्रेनिंग अपनी मन की, ही ट्रेन द माइंड। इसलिए फिर आइंस्टीन एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज, वो कहते हैं एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड ट्वाइस, इस संसार में जो भी घटना घटती है वो 2 बार होता है, पहले आपके मन में और फिर यथार्थ में, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। पहली बार आप राज्यों का अभ्यास कर रहे दोस्तों, इमीडिएटली गाड़ी बैलेंस नहीं होगी, धीरज रखो, हैव पेशेंस, कुछ समय के बाद आप देखेंगे आप अपने मन पर धीरे धीरे कंट्रोल कर पा रहे हो, योर एबिलिटी टू कंट्रोल द माइंड, ये धीरे धीरे हो जाएगा, और धीरे से प्रैक्टिस करने के बाद आप हर स्किल को अचीव कर सकते हो। इसे कहते हैं इन हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत सुंदर कहावत है, इन हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। मन का व्यायाम अगर कोई किया है तो मैं आपको एक छोटे से बच्चे से आपको मिलाऊंगा, देखिए।
Novel was placed in an old library of a town amongst millions of books he belonged to. He said, the little boy.
इस सुंदर से बच्चे का नाम है मोहित, दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद में रहता है, दोनों हाथ नहीं है, क्रिब नहीं किया जीवन में कि मेरा जीवन कैसे हो गया, हार्डवेयर में प्रॉब्लम था बचपन से, दोनों हाथ नहीं, पैरों में भी प्रॉब्लम, लेकिन उसने काम किया अपने मन पर, और जब मन पर काम किया तो वो सारी एक्टिविटी वो कर सकता है जो कोई एक नॉर्मल बच्चा कर पाए। देखिए,
wants to be a which stops us from to be ordinary. However, Mohit is no different individual than us. However, there is indeed something unique, and that is his power of mind, his will to take actions. Mohit has a very simple approach to his life, like most of us. In his story, his style of using his free will creatively makes his life lively. A man of success is one who empowers his maps of imagination. The story of an ant trying to climb a wall is too old. However, not old-fashioned, believes Mohit. Each fall in life has a learning in it, and learning leads to wisdom. Like an ant who craves to be at the top, who wants to be there, Mohit.
कुछ समय के बाद आप देखेंगे मोहित एक काम करता है जो बहुत अच्छा करता है, right? वो घर में जाकर अपनी माँ के लिए ना एक बहुत अच्छा कप चाय बनाकर पिलाता है.
Better how the path is. Just a billions. Beautiful with so.
तो जब आप घर वापस जाएंगे ना तो मोहित से ये कला सीखना, राइट? और घर में जाकर जब आप अपने फैमिली मेंबर्स को जब चाय बनाएंगे तो उसमें वो एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड करना. आप पूछेंगे स्वामी भाई क्या करना है, इलायची अदरक डालना है, वो तो आप डालते ही रहते हैं, लेकिन जब आप चाय बनाएंगे, भोजन बनाएंगे ना, तो बहुत स्नेह, बहुत प्यार, बहुत खुशी, ईश्वर की स्मृति में आपको भोजन बनाना. तो देखिए कितना वंडरफुल रिजल्ट आ जाता है. जब मोहित ये चाय बनाकर अपनी माँ को पिलाता है, मम्मा रिएक्शन देखते हैं.
मैं कहती थी मम्मी आप इतने इंटेलिजेंट.
लव यू मॉम. अ स्ट्रॉन्ग पर्सिस्टेंस इलोप्ड मोहित एंड ऑल वॉट विक्ट्री.
के पैरों में भी प्रॉब्लम है, आर्टिफिशियल लेग्स लगाते हैं. जोर से मोहित के लिए तालियां बजाइए. तो क्या किया? अभ्यास, प्रैक्टिस. दोनों हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आर्टिफिशियल लेग्स हैं, वो सारा काम कर सकते. अभ्यास, प्रैक्टिस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लक्ष्य, लक्षण, प्रतीक्षण और चौथा है निरीक्षण. चेक करना और चेंज करना. ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में एक बहुत सुंदर विधि है कि सुबह सुबह हम लोग मुरली सुनते हैं और सारा दिन उसका अप्लाई करते हैं और रात को सोने के पहले उसको चेक करते हैं. आज शिव बाबा ने कहा था, मीठे बच्चे जब भी आप किसी से मिलेंगे तो मुस्कुराते हुए मिलना, बिल्कुल गुस्सा नहीं करना. तो रात को हम लोग धीरे से चेक करते हैं कि सारा दिन में मैं उस श्रीमत अनुसार चला. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चेक करना, एनालाइज करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट. निरीक्षण करना, द फोर्थ स्टेज ऑफ मोटिवेशन. मैं आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाता हूं. कहते हैं एक बार एक गांव में एक युवक था जिसको कुश्ती खेलने का बहुत शौक था. तो जब वो अखाड़े में गया, गुरुजी से मिला और उस्ताद से मिलकर पूछा, उस्ताद मुझे कुश्ती सिखाओगे क्या? तो गुरुजी उसको कहता, अगर आपको इतना इंटरेस्ट है तो मैं आपको जरूर सिखाता हूं, कल से पहुंच जाना. ये जब युवक अपने घर में जा रहा होता है तो बीच में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में उसका बायां हाथ कट जाता है. जब वो ठीक होता, बहुत दिन हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, लेकिन बायां हाथ गया तो गया. ठीक होने के बाद सीधे फिर से वो अखाड़े में जाता, उस्ताद से मिलता और कहता, उस्ताद मुझे कुश्ती सिखाओगे क्या? तो उस्ताद देखता है उस युवक को और उससे पूछता है, माई डियर बॉय, आपको पता है कि आपका बायां हाथ नहीं है? बोले, यस मुझे पता है. फिर भी कुश्ती सीखोगे? बोला, उस्ताद इसलिए तो मैं आपके पास आया हूं. तो मास्टर कहता है, अगर आपको इतना इंटरेस्ट है तो मैं आपको जरूर सिखाता हूं. और हर दिन गुरुजी उसको दांव पेच सिखाते. काफी दिनों के बाद युवक इस बात को महसूस करता है कि गुरुजी मुझे एक ही दांव पेच सिखा रहे हैं. उसके मन में प्रश्न उठता है कि गुरुजी मुझे दूसरा दांव पेच कब सिखाएंगे? पूछना चाहते हैं लेकिन पूछ भी नहीं पाते, बस वो एक ही दांव पेच में प्रैक्टिस करते रहते हैं. कुछ दिनों के बाद एक दिन उस्ताद अखाड़े में आते हैं, इस युवक को बुलाते हैं और कहते हैं सामने वाले गांव में कुश्ती का कॉम्पिटिशन है, आपको भाग लेना है। युवक को लगता है एक तो मेरा बाएं हाथ नहीं है, ऊपर से गुरुजी ने मुझे एक ही दांव पे सिखाई और वो चाहते हैं कि मैं युद्ध करूं। चलो गुरुजी ने कहा जाते तो हैं। जैसे वो नेक्स्ट विलेज में जाता है, पहला कॉम्पिटिटर आता है, ये युवक उससे युद्ध करता है, आराम से जीत जाता है। उसको समझ में नहीं आता मैं जीता कैसे। जीते 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 वो फाइनल में पहुंच जाता है। फाइनल में जो सबसे टफेस्ट कॉम्पिटिटर आता है, ये युवक उससे युद्ध करता है, आराम से जीत जाता है, गांव का हीरो बन जाता है, ट्रॉफी मिल जाती है। ट्रॉफी लेकर दौड़ भाग कर वो अपने गांव में आता है, गुरुजी को ट्रॉफी देता है, चरण छूता और कहता है गुरुजी मेरे मन में एक प्रश्न है। तो गुरुजी पूछते आपके मन में क्या प्रश्न है? तो कहता गुरुजी एक तो मेरा बाएं हाथ नहीं था, ऊपर से आपने मुझे एक ही दांव पे सिखाई, मुझे समझ में नहीं आया मैं जीता कैसे। तो गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते और कहते हैं मुझे पता था कि आपका बायां हाथ नहीं है, जानबूझकर मैंने आपको एक ही दांव पे सिखाई, आप उसमें प्रैक्टिस करते रहे एक्सपर्ट बन गए। जैसे आप अखाड़े में जाते थे क्योंकि और जैसे आपके पास कोई कॉम्पिटिटर आता था क्योंकि आपके पास सिर्फ एक दांव पे थी जिसमें आप एक्सपर्ट थे, आप क्या करते थे उस दांव पे से आपके कॉम्पिटिटर को जकड़ लेते थे और वो दावपेच ऐसी थी कि अगर आपके कॉम्पिटिटर को उठना होगा उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन थी और ऑप्शन थी कि आपके बाएं हाथ को पकड़ के नीचे करें। वो आपका बाएं हाथ ढूंढते थे, आपका बाएं हाथ मिलते ही नहीं था। फिर गुरुजी कहते हैं माय डियर बॉय आई हैव कन्वर्टेड योर ग्रेटेस्ट वीकनेस इनटू योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, मैंने आपकी सबसे बड़ी कमजोरी सबसे बड़े शक्ति के रूप में परिवर्तन कर दिया। इतने वर्ष मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, मैं हर वर्ष गोल्ड मेडलिस्ट को देखता हूं, यूनिवर्सिटी टॉपर्स को देखता हूं और मैंने महसूस किया जो यूनिवर्सिटी के जो गोल्ड मेडलिस्ट होते टॉपर्स होते ना, ऐसे नहीं कि वो दूसरे बच्चे से कुछ ज्यादा बुद्धिशाली होते, लेकिन वो विधि को अपनाते हैं और विधि को अपनाते हैं तो उनको सिद्धि मिलता है। क्या विधि अपनाते हैं? वो निरीक्षण करते हैं, सभी सब्जेक्ट में से वो देखते हैं कि उनका सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है, फिर वो एनालाइज करते हैं कि उनका सबसे कमजोर सब्जेक्ट कौन सा है। वो अपने शक्तिशाली सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट को पकड़ के रखते हैं, कमजोर सब्जेक्ट पर काम करते करते उसको यहां तक लेकर आते हैं, एनालाइज करते हैं। आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करिए, आपको कहा जाएगा डू योर थॉट एनालिसिस, यू फाइंड आउट व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, यू फाइंड आउट व्हाट इज योर वीकनेस एंड कन्वर्ट योर वीकनेस इनटू योर स्ट्रेंथ, राइट। आप सभी यहां पेरेंट्स हैं, आज शाम को 8:45 को मेमोरी मैनेजमेंट के क्लास है। अगर आपके बच्चे एग्जाम से डर रहे हैं तो थोड़ा सा निरीक्षण अगर आप करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपके बच्चे बुद्धिशाली नहीं है, उनको सही टेक्नोलॉजी नहीं मिली। लेकिन आज मैं आप सभी पेरेंट्स को बहुत नम्रपूर्वक रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे बच्चों की मनोबल इसलिए कम होता है उसके पीछे दो वायरस है और दो वायरस या तो आप पेरेंट्स डाउनलोड कर देते हैं हमारे बच्चों के मन में, नहीं तो हम शिक्षक तो बैठेंगे उसके लिए। और वो दो वायरस है, एक है कॉम्पिटिशन और दूसरा है कंपैरिजन। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कॉम्पिटिशन और दूसरा है कंपैरिजन। जैसे ही बेटा रिपोर्ट कार्ड लेकर आएगा, अच्छा तेरे को 85% मार्क्स मिला है, अभी शाम को कितना मिला, सुनीता को कितना मिला, अनीता को कितना मिला, खत्म कर दिया उसके मनोबल को, राइट। कॉम्पिटिशन एंड कंपैरिजन। आप कहेंगे स्वामी भाई आपको नहीं पता कि संसार में कितना कॉम्पिटिशन है, तो मैं कहूंगा बहन जी आप तो सिर्फ बच्चों का ध्यान रख रहे हो, मैं तो इतने यूनिवर्सिटीज में ट्रैवल करता हूं, सुबह से शाम तक हर छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चों से मिलता हूं, तो प्लीज आप मुझे कॉम्पिटिशन क्या मत सिखाइए। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि संसार का जो सबसे टफेस्ट कॉम्पिटिशन है और वो है ओलंपिक्स, और उस ओलंपिक्स में भी टफेस्ट इवेंट इज द 100 मीटर्स इवेंट, और वो 100 मीटर्स इज टू शॉर्ट अ डिस्टेंस। और जो 100 मीटर्स में जो इवेंट में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना, उनकी जो ट्रेनिंग दी जाती है, उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है एट द स्टार्टिंग लाइन, 100 मीटर्स बहुत छोटा सा डिस्टेंस है। विश्व का सबसे टफेस्ट कॉम्पिटिशन की मैं बात कर रहा हूं। ओलंपिक्स में अगर किसी व्यक्ति को इंडिविजुअल इवेंट 4-5 मिल जाएंगे तो वो उस देश का हीरो जरूर बन जाता है, लेकिन ओलंपिक्स का हीरो बाई डिफॉल्ट इज 100 मीटर गोल्ड मेडलिस्ट, क्योंकि बहुत छोटा सा समय। तो उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जब आप स्टार्टिंग लाइन में रहो और जब आपको शॉट ऑफ द गन सुनाई दे तो बस आपको मंजिल दिखाई देनी चाहिए। और उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जब आप भाग रहे हो तो एक सेकंड एक संकल्प भी नहीं आना चाहिए कि वो आजू बाजू के आपके जो कॉम्पिटिटर्स है वो कितना आगे है कितना पीछे, बस आपको अपना लेन नजर आना चाहिए। विश्व के सबसे टफेस्ट कॉम्पिटिशन में ये ट्रेनिंग दी जाती है दोस्तों, राइट? और अगर कॉम्पिटिशन का इतना शौक है तो 100 मीटर गोल्ड इवेंट से सीखना है, उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि नेवर कम्पीट विथ अदर्स, कम्पीट विथ योरसेल्फ, अपने आप से कम्पीट करो। वो हर गोल्ड मेडलिस्ट जो होता है वो कम्पीट करता है लेकिन अपने स्किल अपने परफॉर्मेंस के साथ। अपने आप को चेक करना दोस्तों और ये देखना कि मैं हमेशा अपने आप को दूसरे से कंपेयर तो नहीं कर रही हूं। आपकी हर एक गाड़ी की अपनी यात्रा होती है, अपनी मंजिल होती है, अपनी एक स्पीड होती है, अपनी एक वेलोसिटी होती है, अपना एक डिजाइन होता है, हर एक अपना पेस होता है। आप जब अपनी यात्रा चल रहे हो तो बहुत खुशी के साथ करो ना। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो बहुत प्यार से टाटा बाय बाय करके उनके आगे बढ़ाओ और आप देखेंगे आपकी यात्रा बहुत एंजॉयबल हो जाएगी। हाँ, कंपीट अगर करना तो अपने आप से कंपीट करो। मुझे आज सारे दिन में 5 बार गुस्सा आता है तो अपने आप से कंपीट करो, कल मैं उसको 4 पे लेकर आऊंगा, 3 पर लेकर आऊंगा। आज सारा दिन अगर मैं बस बीच बीच में खुश हुआ था तो कल मैं पूरा दिन स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, अपने आप से कंपीट करो। तो दोस्तों ये कमजोरी जो है कॉम्पिटिशन कंपेरिजन को निकालकर एक स्ट्रेंथ को बनाइए और वो है कोऑपरेशन, सहयोग। आज परमात्मा के महावाक्य में कहा गया स्नेह और प्रेम की सहयोग की शक्ति, सहयोग ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेशन, डोंट कंपीट, कंपटीशन से नहीं डरो बट बच्चों को बताओ कि आप कोऑपरेट करो। आप यहां पर आ रहे हैं 3 दिन से इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आपको बहुत अच्छा भी लग रहा है लेकिन आप लोग रूम में पता है क्या डिस्कस करते होंगे, क्योंकि 20 वर्ष पहले मैं भी ये करता था। आप लोग आपस में डिस्कस करते ब्रह्मा कुमारी भाई बहने बोलते बहुत अच्छे लेकिन दुनिया इतनी खराब है, दुनिया में ये सब नहीं हो सकता है, ये नहीं चलेगा। आपको अगर ऐसे संकल्प चल रहे तो इसमें कोई गलती नहीं आती लेकिन कभी हो सकेगा ना तो एटॉमिक पावर स्टेशन में जाना और एटॉमिक पावर स्टेशन का जो एटॉमिक एक्सप्लोशन होता है ना उसके प्रोसेस को समझना। ये जो एटॉमिक एक्सप्लोशन होता है ना, ये जो केमिकल जो रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ना, वो क्रिटिकल इवेंट क्रिटिकल लिमिट तक पहुंचता है और जिस दिन ये न्यूक्लियर रिएक्शन वो क्रिटिकल लिमिट तक पहुंचा उस दिन वो एक्सप्लोशन हो जाएगा। उसको एक चेन रिएक्शन कहते हैं, एक चेन इवेंट कहते हैं। यह इस संसार में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मैं मानता हूं, मैं महसूस करता हूं इस बात को लेकिन प्रश्न ये है कि शुड आई बिकम अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और शुड आई बिकम अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ये चॉइस है दोस्तों आपका। और आप यहां पर सब आए हैं, अगर आप स्नेह और प्रेम की सहयोग देंगे तो धीरे धीरे, बहुत कम लोग हैं लेकिन धीरे धीरे हम लोग काम करेंगे और धीरे धीरे काम करते करते आप बस इंतजार करिए जिस दिन ये पॉजिटिव केमिकल न्यूक्लियर रिएक्शन जिस दिन वो क्रिटिकल लिमिट पर पहुंचेगा उस दिन एक ऐसा धमाका होगा और आप देखेंगे विश्व का एक बहुत ब्यूटीफुल परिवर्तन। इसे ये परिवर्तन ऑलरेडी चालू हो गया है, वो धीरे धीरे परिवर्तन और इस परिवर्तन के कॉस्मिक ब्लूप्रिंट में परमात्मा की दृष्टि आप पर पड़ी, बृहस्पति की दृष्टि आप पर पड़ी, गुरु की दशा आप पर पड़ी। ऐसे ही नहीं आप यहां पहुंचे हो, उस कॉस्मिक ब्लूप्रिंट के आधार पर आप यहां पर आए हो। तो इसलिए कैन वी ऑल कोऑपरेट, और जब एक कोऑपरेशन का एक चेन रिएक्शन होता है तो परिवर्तन होता है। हम एक वीडियो को देखते हैं, बहुत सुंदर सा वीडियो है विच स्पीक्स अबाउट द चेन रिएक्शन। दोस्तों दिस इज न्यूटन्स लॉ. वैसे हमारे बच्चों को ना फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ याद नहीं रहता, लेकिन इनको न्यूटन का थर्ड लॉ बराबर याद रहता है. व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. और यही आध्यात्मिकता में इट्स अ लॉ ऑफ कर्मास, कार्मिक अकाउंट. हम जैसा कर्म करेंगे वैसा जरूर जरूर हमारे पास वापस आएगा, 100% आएगा. कुछ बीज होता है जिसका फल इमीडिएटली निकलता है, कुछ बीज. इसे जो कुछ भी हम अच्छा कार्य करें ना, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कर रहे. हर कर्म अच्छा कर्म हम अपने लिए कर रहे हैं कि कुछ समय के बाद वो वापस आएगा. पहला लक्ष्य, लक्षण, प्रशिक्षण, निरीक्षण, और लास्ट जो है वो है प्रेरणा स्रोत. यू बिकम अ रोल मॉडल, योर लाइफ बिकम्स अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अदर्स. और आज हमारे बच्चों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनके सामने कोई रोल मॉडल्स नहीं है. लेकिन कुछ महीने पहले जब मैं अपने बच्चों को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनके सामने कैसा रोल मॉडल महसूस किया. व्हेन आवर ऑनरेबल पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर कलाम पास्ट अवे, तो हमारे बहुत सारे बच्चों ने मुझे लिखा, मुझसे बात बताई. और जब मैं बच्चों से उस इंसिडेंट के बाद में मिल रहा था, फॉर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स डॉक्टर कलाम वॉज अ रोल मॉडल, राइट? तो मैंने बच्चों को कहा, आपको क्यों डॉक्टर कलाम बहुत अच्छे लगते हैं? तो एक बच्चे ने बहुत सुंदर जवाब दिया. फिर मैंने उसको वेबसाइट के साथ कंफर्म किया. तो मैंने कहा, स्वामी सर आप मन की बात करते हो, डॉक्टर कलाम है टेरिफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड. और एक विद्यार्थी ने बताया डॉक्टर कलाम का जीवन का जो लाइफस्टाइल था, इन द लास्ट 50 years ही नेवर वॉच्ड अ मूवी. पिछले 50 सालों में डॉक्टर कलाम ने कभी एक फिल्म नहीं देखी. ये कंट्रोल ऑफ द माइंड की बात है. कहते हैं कि डॉक्टर कलाम के घर में टीवी कभी नहीं था. वो न्यूज सुनते थे तो ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज सुनते थे, राइट? इसे डॉक्टर कलाम के एक वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगता है. इफ यू वॉन्ट टू बिकम लाइक अ सन, यू हैव टू बर्न लाइक अ सन. आपके सूर्य की तरह अगर आपको तेजोमय बनना है तो सूर्य की तरह आपको तपना पड़ेगा. अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे डॉक्टर कलाम को एक रोल मॉडल के रूप में देखते हैं. फिर मैंने बच्चों से पूछा, कैन यू हैव सम लिविंग रोल मॉडल्स? चलो वो तो गुजर गए हैं. तो एक ने कहा सर सचिन तेंदुलकर, राइट? सचिन तेंदुलकर. और मैंने पूछा सचिन तेंदुलकर आपको क्यों अच्छा लगता है? तो उन्होंने कहा सर ही इज अ ओके बैटिंग मैस्ट्रो, सारे रिकॉर्ड जो है वो सचिन के नाम पर है. और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं सचिन ऑल्सो प्रैक्टिसेस मेडिटेशन. और वो मेडिटेशन कैसे प्रैक्टिस करते हैं? वो उस मेडिटेशन को सिद्धांत को समझकर अप्लाई करते हैं अपने क्रिकेट में. मेडिटेशन एक सुंदर सा मन का एक्सरसाइज, एक टेक्नोलॉजी है. आप उसको जिस क्षेत्र में अप्लाई करना चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं सचिन तेंदुलकर को मैं बताता हूं कि कैसे मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, और आज लास्ट 2-3 मिनट हम लोग भी इस मेडिटेशन इसी टेक्निक को यूज करेंगे जो आपको बताया गया था, लेकिन हम इसका एप्लीकेशन सचिन के साथ देखते हैं। Can we have the audio? दोस्तों आपको पता होगा सचिन हैड टू प्ले मोर देन 77 मैचेस टू रजिस्टर हिज फर्स्ट सेंचुरी, एंड टुडे आफ्टर 20 इयर्स प्रैक्टिकली एवरी रिकॉर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट इज इन द नेम ऑफ सचिन। तो सचिन ने कैसे किया अब आप देखेंगे वो वीडियो के द्वारा। स्वमान का वो स्वरूप बने, वो क्रिकेटिंग उन्होंने एनालाइज किया कि मेरे जीवन में मेरे बैटिंग में क्या प्रॉब्लम थी, और पहले से मन बुद्धि को चेक कर वो क्रिकेट के मैदान में जाने के पहले अपने मन बुद्धि को तैयारी की और क्या किया, स्वमान का स्वरूप बनाया मन और बुद्धि। तो मन का काम है संकल्प करना, बुद्धि उसका चित्र निर्माण करती है। तो जब बहने यहां बैठकर आपको कमेंट्री कराते हैं वो संकल्प आप तक पहुंचता है, आपकी बुद्धि धीरे से उसका चित्र निर्माण करने का प्रयास करती है। मन और बुद्धि के द्वारा ये राज्यों का अभ्यास होता है। देखिए सचिन ने कैसे किया, फिर हम अप्लाई करेंगे। तालियां बजाइए। तो सचिन ने क्या कहा, हर बॉल आने के पहले मन और बुद्धि को पहले ट्रेनिंग दी। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ मेडिटेशन इन क्रिकेट। एक बार एक इंटरव्यू में एक बच्चे ने कैंडिडेट में लिखा था, उसमें हॉबीज में उन्होंने क्रिकेट लिखा था। तो जब वो इंटरव्यू पैनल में एक ने उनसे पूछा, हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर, सर नो डाउट सर सचिन तेंदुलकर। तो उस समय सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न अवार्ड मिला गया था। एक फैकल्टी ने उससे पूछा, डू यू थिंक सचिन डिजर्व्स द भारत रत्न, राइट? यूजली पैनलिस्ट ने ये सोचा कि उस कैंडिडेट जवाब देगा कि यस सर, क्योंकि उसने भारत के लिए विश्व कप लेकर आया, इतने क्रिकेटिंग रिकॉर्ड लेकर आया, भारत का नाम बहुत गौरवपूर्ण किया, इसलिए उसको भारत रत्न मिलना चाहिए। यही जवाब सभी ने एक्सपेक्ट किया, लेकिन इस लड़के ने पता जवाब क्या दिया। उनका जवाब था, सर इफ यू थिंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन सचिन तेंदुलकर भारत रत्न अवार्ड फॉर हिज क्रिकेटिंग रिकॉर्ड, देन आई थिंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डन अ मिस्टेक। अगर भारत सरकार ने सचिन को क्रिकेट रिकॉर्ड के लिए अगर भारत रत्न दिया तो शायद भारत सरकार ने गलती की, क्योंकि रिकॉर्ड बनता है टूटने के लिए। सर सुनील गावस्कर का हर रिकॉर्ड सचिन ने तोड़ा, सचिन का हर रिकॉर्ड अगले 5 या 10 साल में टूटेगा सर, बिकॉज रिकॉर्ड्स आर मेड टू बी ब्रोकन। लेकिन मैं फिर भी महसूस करता हूं सचिन डिजर्व्स द भारत रत्न, क्योंकि सर लास्ट टेस्ट मैच 200 टेस्ट मैच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र भारत, सचिन ने एक ऐसा कर्म किया सर जिसके कारण उसको भारत रत्न मिलना चाहिए। सारे फैकल्टी मेंबर्स ने पूछा क्या किया उसने, एनी गेस सचिन ने क्या किया था? एग्जैक्टली राइट, 200 टेस्ट मैच वानखेड़े स्टेडियम, देयर इज समवन टू प्रूव फॉर इट कि लास्ट टेस्ट मैच में सचिन तेंदुलकर ने अपनी मां को याद किया और पहली बार उसकी मां वॉज ब्रॉट इन ए व्हील चेयर, वानखेड़े स्टेडियम में स्पेशल पेमेंट बनाया गया और पहली बार सचिन की मां अपने बेटे को लाइव देख रही थी। और ये लड़का जवाब देता है, सर सचिन वॉज इन ए जेनिथ ऑफ हिज करियर सर, नाम मान शान ब्रांडिंग वेल्थ एवरीथिंग सचिन है, लेकिन अपने लास्ट टेस्ट मैच जेनिथ ऑफ हिज करियर सर सचिन ने अपनी मां को याद किया, एंड देयरफॉर आई फील सचिन डिजर्व द भारत रत्न, दैट इज द ब्यूटी ऑफ। हम अपने जीवन रूपी यात्रा में काफी सफल तो हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने माता पिता को फिर से पीछे मुड़कर देखना, एक्नॉलेज करना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप इस बहुत सुंदर से विद्यालय में आए हो, यज्ञ में आए हो, और जब आप इस यहां पर आए हो तो आप प्लीज 2 मिनट के लिए इस विद्यालय, इस यज्ञ के जो यज्ञ पिता हैं, यज्ञ माता को भी जरूर जरूर याद करना। और हम सब के लिए जो रोल मॉडल्स हैं, खास करके ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के भाई बहनों के लिए, हमारे लिए जो रोल मॉडल हैं, हमारे अपने यज्ञ पिता हैं। परमात्मा शिव ने ये रुद्र ज्ञान की तो स्थापना की, लेकिन हमारे सामने एक रोल मॉडल रखा, एक मोटिवेटर रखा, और वो है प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। हम इनको बहुत प्यार से ब्रह्मा बाबा कहते हैं। दोस्तों आज आप इस संस्था में आते हो, इतने बड़े बिल्डिंग, इतनी सारी फैसिलिटी देखते हो, तो आप जुड़ते हो। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अपने यज्ञ पिता यज्ञ माता 3 दिन आप यहां पर आए हो, उस ईश्वरीय निमंत्रण को स्वीकार कर जाने के पहले एक काम जरूर करना, हमारा जो यहां पर जो बुक स्टॉल होता है ना, वहां पर एक किताब जरूर लेकर जाना, और उस किताब का नाम है ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, वो किताब पढ़ना, और आपको इस यज्ञ का इतिहास पता चलेगा, 80 वर्ष का इतिहास। आज सारा विश्व इस ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय को रिस्पेक्ट करता है, रिगार्ड करता है, लेकिन 80 वर्ष पहले का इतिहास अगर आप देखेंगे तो बाबा मम्मा हमारी दादियां दीदियां को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, बाबा के प्रति लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन ब्रह्मा बाबा हमेशा मुस्कुराते हुए कहते थे कि शिव बाबा का डायरेक्शन है, मैं बस शिव बाबा का एक इंस्ट्रूमेंट हूं, निमित्त मात्र मिलकर चल रहा हूं। और आज आप देखेंगे ब्रह्मा कुमारी का बहुत सुंदर सा एक विद्यालय। बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा का स्ट्रैटेजी क्या था, वो खुद हाईली सोर्स ऑफ मोटिवेशन था, लेकिन ब्रह्मा बाबा की स्ट्रैटेजी थी, लीडरशिप का एक बहुत सुंदर फंडा है दोस्तों, कि दूसरों को आप समान बनाओ, दूसरों को आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा बाबा ने मम्मा ने खुद को तो अपने आप को तैयार किया, लेकिन साथ साथ में बाबा ने मम्मा को दादियों को तैयार किया, दादियों ने दीदियों को तैयार किया। आज हमने ब्रह्मा बाबा मम्मा को नहीं देखा है, लेकिन हमारे सामने जो दादियां आते हैं, और आज आपके सामने मुझे बताया गया 12 बजे आदरणीय दादी जानकी जी आएंगे, जो बचपन से लेकर बाबा और मम्मा की पालना थी। नाउ शी हैज बिकम अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस, इट्स सर्टनली अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अस ऑल्सो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। स्वामी विवेकानंद कुड बी अ रोल मॉडल फॉर मेनी, लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते थे मेरे जैसे अगर 100 बाल ब्रह्मचारी युवक मुझे मिल गए तो मैं भारत को परिवर्तन कर सकता हूं। परमात्मा शिव और यज्ञ पिता माता कहते थे सौ बाल ब्रह्मचारी से हमें भारत को सिर्फ परिवर्तन नहीं करना है, हमारे हमको सारे विश्व को परिवर्तन करना है। और मैं आज आपके सामने इस पवित्र भूमि में बहुत फक्र के साथ कहता हूं, हमारे इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में करीब 1.5 लाख से ज्यादा बाल ब्रह्मचारी युवा भाई बहने अपने सारे कर्म करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। ये बहुत निश्चय और बहुत नशे की बात है। ये क्यों जरूरत है? आप एक काम करिए, प्रोग्राम खत्म होने के बाद लाइब्रेरी में जाइए और वहां का न्यूज़पेपर पढ़िए, और न्यूज़पेपर में आप देखेंगे आज की जो समाज की अवस्था और व्यवस्था, और आने वाले समय पर दोस्तों ये जो नेगेटिविटी है, आपका जो टॉपिक है पीस सेफ्टी एंड स्पिरिचुअलिटी, इस पवित्र मंच से मैं आपको बताना चाहूंगा, और परमात्मा ने कहा है आने वाले समय पर ये समाज की नेगेटिविटी इतनी बढ़ेगी, लोगों को अपने मन पर कोई कंट्रोल नहीं, कर्मेंद्रों पर कोई कंट्रोल नहीं होगा, ऐसी काम और क्रोध की जो अग्नि भड़केगी ये बहुत तेज से आएगा। और ऐसे समय पर सुरक्षा का सिर्फ एक माध्यम है और वो है पवित्रता। सिर्फ व्यवहार की शुद्धि नहीं, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्माचार्य ब्रह्मा बाबा ने जो अपने मन को स्वच्छता, मन में पवित्रता की जो बात कही, आने वाले समय पर सिर्फ एक ही सुरक्षा कवच हमारे पास हो सकता है दोस्तों, और वो है पवित्रता का सुरक्षा कवच। और अगर अपने मन को तन को अगर हमें पवित्र बनाना है, सेफ्टी का सुरक्षा चक्र चाहिए, तो वो है स्पिरिचुअलिटी एंड दैट इज राजयोग। राज अर्थात अपने कर्मेंद्रियों पर राजा, राइट? राज मतलब उस रहस्य को समझना, समय के उस परिवर्तन के इस गति को समझना और अपने आप को पवित्रता के सुरक्षा कवच पर लेकर आना, ये समय की मांग है, ये समय की पुकार है। तो आज मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम के बाद ऐसे थे ब्रह्मा बाबा यज्ञ का इतिहास आप जरूर जरूर पढ़ना, और इस पूरे दिन के बाद जब जाने के पहले आप वापस आए या नहीं आए, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, शास्त्रों में ये गायन है, शास्त्रों में गायन ये था कि जब ब्रह्मा ज्ञान बांट रहे थे तब आप कहां थे। बहुत फक्र के साथ कहना, जब परमात्मा शिव ब्रह्मा के द्वारा जब ज्ञान बांट रहे थे, आप शांतिवन में बैठकर सुन रहे थे, अपने जीवन का वो लक्ष्य किया, लक्षण धारण किया, अपने मन को ट्रेन किया राज्यों से, निरीक्षण किया, और कुछ समय के बाद आप सभी ब्रह्मा बाप समान बन जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे। यू विल बिकम अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, यू विल बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी। इसी शुभ भावना के साथ अब हर कहते हर सितारे की एक दुनिया होती है दोस्तों, जब आप घर में जाएंगे आप एक चमकता हुआ सितारे की अपनी दुनिया है। यू शुड बिकम अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर योर फैमिली, फॉर योर फ्रेंड्स, फॉर योर रिलेटिव, फॉर योर कलीग, फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी। लास्ट दो मिनट में हम लोग ये मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, और यहां बैठकर मैं बस आपको एक टिप दूंगा, क्या करना है। एक तो जब आप भोजन शुद्ध शाकाहारी करते हैं, और लास्ट इस प्रोग्राम के बाद हमारे भाई साहब मुझको कह रहे थे कि एक नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन भोजन पर एक वीडियो है, ये वीडियो कैसा है मैंने नहीं देखा है, लेकिन भाई साहब कह रहे हैं तो एंड में आप जरूर जरूर देखेंगे। लेकिन आज आप यहां पर देखेंगे, जब आपका भोजन शुद्ध, अभी मेडिटेशन के बाद देखिए, जब हम अपना भोजन सात्विक करते हैं तो धीरे धीरे मन भी सात्विक बनता है। तो मेडिटेशन में क्या करना, यहां बैठकर एक सिचुएशन को बस लेना दोस्तों, कि आप जब घर जाएंगे तो कौन सा ऐसे सिचुएशन में आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, सिचुएशन देखना, और उस सिचुएशन, वो सिचुएशन परिवर्तन नहीं होने वाला दोस्तों, चाहे आपके क्लोज फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव, जिस सिचुएशन पर आप गुस्सा आता है, यहां बैठकर जैसे सचिन तेंदुलकर ने मन और बुद्धि के द्वारा प्रोग्राम किया, यहां बैठकर आप प्रोग्राम करेंगे कि जैसे ही मैं वो घर में जा रहा हूं वही सिचुएशन, वही परिस्थिति, शुभ भावना तो रखना, लेकिन अगर वो गुस्सा दिला रहे हैं तो मेरा स्वमान क्या होगा, मेरा स्वरूप क्या होगा। तो एक स्वमान, मैं शांत स्वरूप, मैं बहुत प्रेम स्वरूप, और देखना उस सिचुएशन में, सिचुएशन वही लेकिन गुस्सा नहीं करेंगे, उस सिचुएशन में आप बहुत शांतिपूर्ण, बहुत प्रेम स्वरूप पे आप व्यवहार कर रहे हो। आपको सभी को एक्सरसाइज समझ में आया, कितनों को एक्सरसाइज समझ में आया वो हाथ उठाएं, कितने भाई बहन हाथ नीचे रखे, कितने भाई बहन करेंगे वो हाथ उठाएं, वेरी गुड।
लास्ट दो मिनट हम ये मेडिटेशन करते हैं। रेड लाइट कर दें। ओम शांति। आज हमारे जीवन का लक्ष्य, आई नीड टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, मुझे अपने लिए एक अच्छा व्यक्तित्व निखारना है। लक्षण, एक अच्छा व्यक्तित्व की निशानी, सारे दिव्य गुण, शीतलता, शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता, अंतर्मुखता, हर्षित मुक्ता। ये सारे दिव्य गुण सुनने में कितने अच्छे लगते हैं। अगर ये सारे लक्षण अगर किसी व्यक्ति में होगा तो व्यक्ति आपको कितना अच्छा लगेगा। और महसूस करिए, ये सर्व दिव्य गुण अगर आप में होंगे तो ईश्वर आपको देखकर कितना अच्छा फील करेगा। आप ईश्वर के प्रिय बन जाएंगे। इस श्रेष्ठ लक्षण को देखते हुए अब अपने मन और बुद्धि को प्रशिक्षण दीजिए। मैं शांत स्वरूप हूं, मैं स्नेह स्वरूप हूं, निरीक्षण करिए कौन से सिचुएशन में आपको बहुत गुस्सा आता है, किस पर आपको बहुत गुस्सा आता है, ऑफिस में, घर में, समाज में। निरीक्षण करते हुए अपने मन और बुद्धि को प्रशिक्षण करिए। महसूस करिए, यहां से जब आप वापस उसी स्थान पर पहुंचेंगे तो सिचुएशन वैसे का वैसे ही है। अब आप अपने आप को कमांड करिए शांत स्वरूप और स्नेह स्वरूप में। आप बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपका व्यवहार बहुत श्रेष्ठ, आपका स्वाभिमान बहुत ऊंचा, आपके उस व्यवहार से आप स्वयं अच्छे लगने लगे हो। You're feeling good about yourself। और महसूस करिए उस सिचुएशन में आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं आया और आपके मस्तक पर परमात्मा शिव यज्ञ पिता के द्वारा आपके सामने ब्रह्मा बाबा यज्ञ पिता आपके अपने अलौकिक पिता बहुत प्यार से आपको मीठे बच्चे प्यारे बच्चे और आपके मस्तक पर विजय का तिलक लगा रहे हैं। आप उस सुंदर से फरिश्ते को देखिए, देवदूत एंजल यज्ञ पिता के स्वरूप में, और वो फरिश्ता आपको कह रहा है, बच्चे आपके ऊपर शिव और ब्रह्मा की दृष्टि पड़ी है, आज से आपकी गुरु दशा आरंभ हो रही है, आपके जीवन में सफलता और खुशियां परछाई की तरह आपके पास आएंगे। आपके और आपके परिवार में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस सहज आपके जीवन में आएगा। बहुत प्यार से ब्रह्मा बाबा को थैंक्स करिए, शिव बाबा को थैंक्स करिए, अपने श्रेष्ठ स्वमान को देखते हुए धीरे धीरे वापस आइए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत दिल से थैंक्स।